Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari.
Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari.
Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari.
Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari.
Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana.
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 Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari.
Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari.
Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari.
Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Dhari.
Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana.
Yashodanandana Braja Jana Ranjana.
Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira Vanachari.
Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari.
Radha Madhava, Kunja Bihari.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Sri Radhe Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमः भगवते
नमो भगवते चैतन्य चंद्राय
भगवते चैतन्य चंद्राय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नर चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासम्
देवीं सरस्वतीं व्यासम्
ततो जये मौदीरये गुरुवे गौरचंद्राय
गुरुवे गौरचंद्राय
श्री राधिकाये तदालये
राधिका तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
कृष्ण भक्ताय
तद भक्ताय नमो नमः
तद भक्ता नमो नमः
अयि दीन दयाद्रनाथ हे
दीन दयाद्रनाथ हे
मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वदलोककातरम् दयितं भ्राम्यति किं करोम्यहम् धन्यवाद हरे कृष्णा तो आप सभी कृष्ण कथा रस पिपासु प्रेमी श्रोताओं के चारों चरणारविंद में भगवत भाव से सादर वंदन करते हैं और हृदय से भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं कि आप सभी मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ सार वस्तु भगवत कथा सत्संग श्रवण करने के लिए पधारे हैं। श्रीमद् भागवत डंके की चोट से कहता है, यूं तो देने के लिए कई नजराने हैं भगवान के द्वारा जीवों को, लेकिन कौन सा ऐसा नजराना, नजराना माने गिफ्ट, उपहार, जो सत्संग का मुकाबला कर सके। भगवान शिव कहते हैं भागवत में और सूत जी भी कहते हैं, मर्त्या नाम किमुताशिष, मनुष्यों के लिए, हम सभी मर्त्य है। मर्त्य शब्द का अर्थ होता है कि जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त मर सकता है, इसलिए हमको क्या कहा जाता है, मर्त्य। और मर्त्या नाम बहुवचन में है, ऐसे मरण धर्मा मनुष्यों के लिए किमुत आशीष, सबसे बड़ा वरदान क्या है, भगवत भक्ति संगस्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी वैष्णव साधु के संग में बैठकर हरि कथा श्रवण से बढ़कर और कौन सा वरदान है जो जीव को अमरता की ओर ले जाता है। कई बार भक्त लोग प्रार्थना करते हैं वैष्णव गुरु चरणों में कि हे नाथ दया करो, कृपा करो, लेकिन साधु संत कहते हैं किसी भी साधु वैष्णव की कृपा यही है कि वो कथा कहे। कथा कहना और कृपा करना एक है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए हमारे सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे कि कृपा करना, जैसे कोई गुरु किसी शिष्य पर कृपा करे, मतलब क्या, हाथ ऐसा रख के फोटो खिंचवा दे, सेल्फी नहीं, कृपा करना मतलब कथा कहे। सुखदेव जी ने कृपा किया राजा परीक्षित के ऊपर कि भागवत कथा रस दिया। इसीलिए हम सभी साधकों के लिए सावधानी पूर्वक एक साधना करनी है। सनकादिक मुनि कहते हैं भागवत महात्म्य में, न यत परो धर्म श्रवणादपि, सुनने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। नेता दृशम परो धर्मो यत कथा श्रवणम विना, कई जगह ये बात आई है और इस बात को समझने वाले महाजन महापुरुष, चाहे वो सुखदेव हो या महादेव, बस इसी कृष्ण कथा और इसी कृष्ण कीर्तन में मस्त रहते हैं। और यही गोलोक वृंदावन का प्रेम धन प्रदान करने के लिए कलयुग में एक अवतार हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का, जिसको संकीर्तन के पिता कहा गया। संकीर्तने कपितरो
कमलायताक्षों।
जो भुजाओं को उठाकर मनुष्यों की क्या कहे, पशु पक्षियों को भी प्रेम रस दिया, ये संकीर्तन रस दिया। और उसी चैतन्य महाप्रभु की पावन परंपरा में उन्हीं के पार्षद, आध्यात्मिक जगत के राजदूत इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की गंगा लहराई, भागवत की गंगा को प्रदान किया, ऐसे ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी छत्र छाया में हम महाप्रसाद लेते हैं, कीर्तन करते हैं, नित्य करते हैं, दर्शन करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं, और सबसे बड़ा धन जिसको ब्रज की वनिताओं ने, गोपियों ने अमृत कहा, तब कथा अमृतम रस पीते हैं, ऐसे प्रभुपाद के प्रति हमेशा शरणागत, समर्पित, कृतज्ञ रहते हुए हमें भक्ति साधना को करना है। गुजराती माँ कहो तो प्रभुपाद ने परंपरा केसर नो आंबो से भाई जेने आपने प्रेम रस आपो। आज आप जानते जेठ महीने की सुद माने शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है। कल तो भीम भैया की कृपा है। कई बार भक्त लोग कहते कि भीम ने या हूं हुजू एना लीधे आखू गाम हैरान था, एवं कहनारा छे। लेकिन बिना जल के निर्जला एकादशी व्रत किया व्यास की आज्ञा से भीमसेन, जिसको भगवत गीता में संजय प्रथम अध्याय में वृकोदर संज्ञा देते हैं, भीम कर्मा वृकोदर पौंड्र दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। भीम तो कर्म थे उसके, और कर्म के अनुसार नाम भी हो गया था। ऐसे हम लोग समझते कि भीम मतलब उसको बड़ा पेट होगा, नहीं, पेट तो एकदम पतला था, छाती बड़ी थी। पीपल का पान देखे हैं आप लोग, उल्टा कर दीजिए, ऐसे ऐसे लोग यहां मिलेंगे, गड़ू एटलू है, पेट तुम्हारा चंपल ही नो देखा था। लेकिन उसको उल्टा कर दीजिए तो पतली कमर हो जाती है ना, छाती चौड़ी थी भीम की, पेटू नहीं था, मोटू नहीं था वो। हम लोग तो यहाँ कोई मोटे पेट वाला होता है तो उसको भीम बुला देते हैं। भीम कर्म थे उसके, भीम मतलब महान, बड़ा, विशाल, बृहद, और काम के अनुसार नाम था उसके। उसके पेट में वृका नाम की अग्नि थी जो पत्थर को भी पिघला सकती है, लावा समझिए एक टाइप का, लावा समझते हैं ना, लावा रस जो निकलता है, वृका अग्नि। वो कुछ भी खाए, भीम अगर पहाड़ भी खा जाए तो भी पत्थर पच जाएगा उसको, वृका अग्नि थी, बड़ी सख्त। और इसलिए वो कहते थे कि एकादशी हरे कृष्ण। लेकिन व्यास जी ने कहा एक ही रख लो भैया, सबका फल मिल जाएगा। आज आदिवास है, एकादशी उपवास होता है, उसके पूर्व तिथि को, जैसे जन्माष्टमी उपवास है, रामनवमी, उसके एक दिन आगे को भारतीय शास्त्र आदिवास संज्ञा देता है कि व्रत उपवास के पहले भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है। भगत लोग तो रात को 12 बजे तक गिलास लेके बैठते कि अभी 12 बजे से मैं पी लूं, काले निर्जला, कल निर्जला है। और हमने प्रत्यक्ष किया है, और एक दो भगत देखे और बोले प्रभु जी आपको निर्जला, बोले निर्जला है, जल कहाँ पी रहा हूं, मौसम्बी का जूस पी रहा हूं। जूस पीने को तो मना नहीं ना, जल पीने को मना है, अब बताओ क्या करें। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात, जब प्रभुपाद जी ने भागवत की गंगा पूरे विश्व में बहाई तो याद करना चाहिए आज दसवीं तिथि है, आज गंगा दशहरा है। आज के दिन भगीरथ की तप प्रार्थना प्रयास से भूतल पर भगवान श्री वामन देव के वाम चरण के अंगूठे से निकला हुआ कारणोदक सागर का दिव्य पवित्र जल गंगा संज्ञा धारण करके इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया था और भूतल पर आया था। तो आज गंगा जी का भूतल पर प्राकट्य दिन है। जानते हैं वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सगर राजा जो थे ना सूर्य वंश के, 30,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किए, अपनी सुमति की पत्नी से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, बड़े दुखी हुए। अश्वमेध यज्ञ के समय मैसेज मिला। लेकिन दूसरी रानी थी सगर की केशिनी, और उससे एक पुत्र हुआ अंशुमान। असमंजस के बाद, असमंजस का तो तपस्या का वर्णन नहीं है इसलिए मैं उसका नहीं याद कर रहा हूं। अंशुमान के विषय में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, द्वांत्रिशम वर्षम तपोवनम गतः, 32,000 वर्ष तक बिना खाए पिए अंशुमान तप किए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर गंगा को लाना था। बिना अन्न जल लिए केवल हवा पीकर कितने साल? 32,000 साल। आपको 24 घंटा बिना पानी के रहना है तब भी नानी मरती, 32,000 वर्ष। लेकिन तप करते करते जीवन का समय अवधि समाप्त हो गया, काल आ गया, शरीर शांत हो गया, तो उसके पुत्र जिसका नाम बड़े गौरव से लिया जाता है दिलीप, और उसने कितना तप किया वाल्मीकि जी लिखते, 30 वर्ष सहस्त्राणी। पिता का अधूरा काम पुत्र पूरा करता है, और हमारे पितरों को भगवत धाम ले जाने के लिए, पाप अपराध से मुक्त करने के लिए उस आत्मा को भूतल पर गंगा को लाना है, तो उसने तप चालू किया। 30,000 वर्ष, 32,000 अंशुमान, 30,000 वर्ष दिलीप उसके लड़के, शरीर शांत हो गया उसका भी। अब उसके पुत्र थे भगीरथ, जिन्होंने 10,000 वर्ष तप किया, सगर ने 20,000 वर्ष। टोटल मिलाकर सगर और उसके पुत्र भगीरथ चार पेटी में 90,000 वर्ष तप किया, तब गंगा जी पृथ्वी पर आई है। आपने मफत में नावानु भाई, काय करवानु नहीं, बस। जिस गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राम के पूर्वज सूर्यवंशी इन सगर सगर पुत्रों ने 90,000 वर्ष तक तप किया है, और उस तपस्या का फल है कि आज भारत की पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण के चारों चरणांद का साक्षात चरणामृत भगवती गंगा के रूप में बह रहा है। इदम ही गंगम कथम भूतम गंगा। गंगा क्यों कहते हैं जानते है? पहले नाम गंगा नहीं था इनका। गाम शब्देन पृथ्वीम गमयति, जो पृथ्वी में गमन की, इसलिए नाम हो गया गंगा। नहीं तो शिव जटा में थी तब तक नाम अलकनंदा था। आप लोग की जानकारी के लिए भागवत 5वां स्कंद 17वां अध्याय गंगा अवतरण पूरा अध्याय है, पढ़ लीजिएगा किस तरह गंगा जी आई है। वामन देव के वाम चरण, वाम मतलब कौन सा होता है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। वामन देव का कौन सा चरण ऊपर गया था? बायां, लेफ्ट चरण। और उसके अंगूठे ने कवर फाड़ दिया ब्रह्मांड का, तो जल नीचे गिरा, तो सीधा कहां गिरा? सुखदेव जी वहां पर कहते हैं 5:17 अध्याय 5वां स्कंद 17वां अध्याय प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक में कहते ध्रुव लोकम गतः। प्रथम वो ब्रह्मांड से निकला हुआ ध्रुव लोक में गया, और भगवान के चरण लाल लाल गुलाबी थे, और उनके चरणों से छूकर हुई तो गंगा जी का कलर भी गुलाबी था, पिंकिश कलर, लाइट पिंक। भागवत प्रमाण अमलम, कोई बाहर की बात नहीं है। हम वैष्णव का एक सिद्धांत होना चाहिए, ना मूलम किंचिदपि, मूल से बाहर नहीं बोलेंगे और अनावश्यक बात नहीं बोलेंगे। समय टाइम पास नहीं करना है बढ़िया फालतू बोल बोल कर, ना अनपेक्षितम उच्यते ना मूलम किंचित अपि लिख्यते, जो सही वैष्णव लेखक होगा ना, वो बोलेगा या लिखेगा, लिखेगा मूल के बाहर नहीं, परंपरा वैष्णव ग्रंथों के बाहर नहीं, और अनावश्यक अनार्थक टाइम पास नहीं। कोई भी बात करो प्रमाण से करो और पवित्र भाव से करो, और अच्छा है, उससे भी अच्छा है प्रेम से करो, उससे भी अच्छा है प्रेम पाने के लिए करो, उससे भी अच्छा है दूसरों को प्रेमी बनाने के लिए करो। ये भागवत परंपरा है। और जो पदार्थ को चाहता है, संसार को, संसार के पदार्थ की चाहना करने वाला, इस प्रेम शास्त्र के बोलने का लिखने का अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि ये भागवत प्रेम शास्त्र है जिसका प्रमाण महाप्रभु अमल कह रहे हैं, अमल पुराण। प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो ना परह। ध्रुव लोक में गया परम आदरणेन, सुखदेव जी कहते हैं द्वितीय श्लोक में, परम आदर रेण, परम आदर के साथ के, ओहो मेरे प्रभु के चरणों का चरणारविंद, ये साक्षात गंगा जल सर पर लिया। दुनिया लोगों को पता चल गया, चंद्रदेव को, वरुण देव को, इंद्र देव को, कि अरे भगवान के चरणों का साक्षात चरणामृत ध्रुव लोक में गया। ध्रुव जी से प्रार्थना किया, प्रिया थोड़ा सा दे दो। ध्रुव जी बड़े उदार थे, सप्तऋषि तो ध्रुव लोक के आसपास ही परिक्रमा करते हैं। सप्तऋषि जानते हैं ना, सातों ऋषि के नाम है, वशिष्ठ जिसमें प्रमुख है, सूर्य वंश के गुरु, ऐसे बदलते रहते हैं मनवंतर के अनुसार सप्तऋषि। और वे सप्तऋषियों ने ध्रुव से कहा हमको भी उद्धार करो, वहां से सप्तऋषियों के लोक में गया, वहां से करोड़ों करोड़ों विमान में भरकर चंद्र आदि लोकों में गया। उसके बाद ब्रह्म लोक में आया, ब्रह्म लोक में सत्य लोक में, जो इस 14 ब्रह्मांड का प्रथम लोक है। और उस ब्रह्म लोक में एक सबसे बड़ा पर्वत जिसको मेरु कहते हैं, जो सुवर्ण का है, और उस मेरु पर्वत की चोटी पर जल गिरा। ध्रुव लोक से सप्तऋषि लोक होता हुआ वो जल गंगा जी का जब वामन चरणों से निकला तब की बात, मेरु पर्वत की चोटी पर गिरा। तो पर्वत जैसे भी होता है तो उसकी चार दिशा होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पूर्व दिशा में जो धारा गई गंगा की उसका नाम हो गया चक्षु, जो पश्चिम में गई सीता, गंगा जी के नाम बदल गए। जो दक्षिण में धारा गई मेरु पर्वत की दक्षिण साइड में जो धारा गई उसका नाम हुआ अलकनंदा, और अलकनंदा हेमकूट पर्वत से होकर भारत वर्ष में आई। अन्य धारा अन्य पर्वत से होकर केतुमाल वर्ष में, भद्राश वर्ष में, 9 वर्ष है और 7 द्वीप है। प्रसाद खाओ भाई जो भी है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हमने एक बार किसी को पूछा, भैया आप जगन्नाथपुरी गए? बोले कौन सी पुरी, पानीपुरी, भेलपुरी, सेवपुरी की बात करो। उसको पता ही नहीं था कि जगन्नाथ का नाम पुरी है। मैं बोला और कोई पुरी? कोई पूरी नहीं पता। शास्त्रों में तो शरीर को भी पूरी कहा गया है, यह नव द्वारे पूरे देही, सप्त मोक्षदायी का पूरी, जिसमें जगन्नाथ का नाम तो है नहीं, जगन्नाथ पूरी जिसको हम कहते हैं। पूरी का टिकट लिया बोलते हैं ना, पूरी बोलते, वहां लिखा भी पूरी है, जगन्नाथ पूरी नहीं लिखा, पूरी। एनीवे, किसी भी शुद्ध साधु के चरणों में बैठकर सद ज्ञान बढ़ता है अगर समर्पण भाव से लिया जाए तो। अलकनंदा नाम के भी कारण बताए गए हैं, शिव जी की जटा में आई थी ना, इसलिए अलम शब्दे न, संस्कृत में कोई भी शब्द बनता है धातु से बनता है, अलक नंदा, नंदयति इति नंदा आनंद का सूचक है, और अलक अलम शब्द मूल धातु अलम है, इसमें फिर तक ताप प्रत्यय लग के अलग शब्द बना। अलम शब्द भूषणार्थम किसी शोभा सिंगार के लिए यूज होता है, और इसलिए उसमें क शब्द बन के अलक, बाल की जो ये लट होती है ना उसको अलकावली अलक कहते हैं। अलक कुला वृतान नाभजम भीष्म स्तुति त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधानम वपुर अलक कुला वृतान नाभजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। द्वितीय श्लोक, तो शिव जी की जटा में अलकों में आई आनंद देती हुई, इसलिए नाम हुआ अलकनंदा। और जब भूतल पर आई पृथ्वी पर भगीरथ के कारण, तब गाम गमयति पृथ्वी पर आई, इसलिए इसको गंगा कहते हैं। और भगीरथ जैसे संसार में भी कोई बड़ा तपस्या का बड़ा भारी असंभव अलौकिक दीर्घ मेहनत वाला काम करे तो हम कहते हैं भगीरथ प्रयास किया इसने, मतलब नाम पड़ गया किसी हार्ड वर्क को। ऐसे कलयुग है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन हार्ड वर्क जो जिसमें बहुत मेहनत हो कोई कर न सके तो उसको संस्कृत में भगीरथ काम कहते हैं। बोले बड़ा भगीरथ काम किया, मतलब गंगा जैसा काम। लेकिन कुछ लोग ऐसे है ना, खुद न लाए चुल्लू भर पानी और ते ही निंदे ही जही गंगा आनी, बैठा बैठा एवी निंदा करता हो जो कोई दी चुल्लू अटले नहीं क्यों तो मैं गुजराती में चुल्लू नहीं क्या खोबो खोबो ही नहीं खोबी एक आम नहीं आम मतलब चुल्लू तो आने एक ने क्या बोलो खोबो तो आम करो पड़े ने अंजलि पानी खाली बस गमे ने नानो दिमाग वापरवा कोई भी बात हो शब्द हो केवल अंजलि चुल्लू कहते हैं उसको। खुद न लाए चुल्लू भर पानी और बैठे बैठे उसकी निंदा करते जिन्होंने गंगा आनी। हरि गुण न गावही न हरि गुण सुनही बातन ही आसमान गिरा वही। नरेंद्र मोदी थी हेठी बात तो करे नहीं वो पास ठेठ संसद दी बात करता है तने ओळख तो नहीं गाम में कोई उशीना नहीं देतो तू कई कामे लायक पण वातु मोळी न होय आसमान फाड़ी नाखे एवी होय। ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है इस संसार में। इदम ही गांगम, गाम शब्दे न एक अर्थ होता है गाम्यते गम्यते इति प्राप्यते, भगवत प्रेम प्रदान करने वाली है, पृथ्वी पर आई है स्वर्ग ले जाने के लिए। स्वर्ग शब्द का अर्थ केवल हेवन इंद्र का लोक मत समझिएगा, भगवत धाम को भी शास्त्र स्वर्ग कहता है। अब संस्कृत भाषा ऐसी कई अर्थ बनते हैं भैया। स्वर्ग में भी जिनकी कीर्ति गाई जाती है उस लोक की बात कही जा रही है यानी कि भगवत धाम की, क्योंकि इंद्र आदि देवता कभी अमेरिका या लंदन के गुणगान नहीं गाते, वे वैकुंठ के गाते हैं। स्वर्ग ये सब प्रथम अध्याय में ही आया है, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय स्वर्ण का दे, वहां पर स्वर्गाय लोकाय जब बोला गया कि स्वर्ग लोक के लिए जाने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, उसकी टीकाओं में हमारे आचार्यों ने सब समझाया है। एनीवे भक्तों आप जाग रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, साहस कर रहा हूं बोलने का, कुछ बातें स्मरण आ रही है, गंगा आज प्रकट हुई है इसलिए उनको याद करना है, क्योंकि हमारे वेद व्यास ने लिखा है गंगे गंगेति य ब्रुवन, ब्रुवन मतलब बोलना, यह मतलब जो भी व्यक्ति गंगा गंगा बोलता है योजनात् शतेरपि, 100 योजन दूर से, एक योजन मतलब 8 किलोमीटर, 100 योजन मतलब 800 किलोमीटर कम से कम। गंगे गंगेति य ब्रुवन योजनानपि शते, 100 योजन दूर से मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, सारे पाप धुल जाएंगे भगवत धाम जाएगा। खाली गंगा बोलेगा पिएगा नहाएगा तब तो गरुड़ जी आएंगे कि आजा बेटा फ्री में सवारी भेजा है ठाकुर जी ने, बड़ी महिमा है। इदम ही गांगम, गम शब्दे न गाम्यते प्राप्यते स्वर्गम, स्वर्ग तत्परि उपरि लोकम, और गम शब्द का अर्थ है मोक्षार्थम, जो मोक्ष देती है, गम शब्द का भगवत प्रेम भक्ति देती है इसलिए उसे गंगा कहते हैं। पृथ्वी पर आई इसलिए गंगा, पृथ्वी पर आई स्वर्ग ले जाने के लिए प्राप्यते इसलिए गंगा, मोक्ष प्रदान करती है इसलिए गंगा, और भगवत प्रेम भक्ति प्रदान करती है इसलिए गंगा कहते हैं। इस पानी का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, गंगा। गोविंद के चरणों का चरणामृत, साक्षात चरणामृत। महाप्रभु चैतन्य ने तो कहा है कृष्ण 2 रूपों में है, दारू रूपे जगन्नाथ है और भागीरथी हे न जल संत प्रकट संपत्ति, ये गंगा तो साक्षात भगवत भगवी विग्रह है जो पानी के रूप में बह रहा है। और इदम ही गंगम त्यजता इह अंगम, अगर इसमें कोई शरीर छोड़ दे न पुनरपि चांगम, फिर उसको शरीर फिर वो मां के गर्भ नहीं आएगा। यत किंचित अपि अंगम, अगर उसको फिर शरीर मिल जाए तो वो शरीर कैसा होगा, करे रथांगम, रथ का अंग मतलब रथ का अंग क्या होता है, चक्का मतलब सुदर्शन, सुनवन सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि चयानि लोके 11:2:39 कवि जी निमि महाराज की सभा में कहते हैं। सुनवन सुनिए किसको, सुभद्राणी जो तुम्हारा सुभद्र, भद्र माने मंगल कल्याण करेगा, किसका गुण किसका कीर्तन, बोले रथांग पाणी जिसके हाथ में रथ का अंग है, जो भीष्म को मारने के लिए कुरुक्षेत्र में उठा लिए थे, सुदर्शन चक्रधारी जिसने रथ का पहिया उठा लिया। मतलब आपको शरीर मिलेगा अगर गंगा, पहले तो मिलेगा ही नहीं, मोक्ष हो जाएगा। यत किंचित मिल जाएगा तो कैसा होगा, विष्णु स्वरूप होगा वैकुंठ का, मतलब करे रथांगम शयने भुजंगम, शेषनाग आएंगे बेटा आजा सो जा मेरे पे, याने विहंगम और गरुड़ जी सवारी लेकर आएंगे बैठ जा। दूसरा लाभ क्या होगा, चरणाम्बु गंगम, फिर आपके चरणों से भी जो छू जाएगा वो भी क्या हो जाएगी, गंगा। इदम ही गंगम, ये है गंगा। कवि गंग गए एक बार, अरे सब इसमें गंगा में पड़ जाएंगे तो चैतन्य गंगा रह जाएगी, गौरांग गंगा। कवि गंग, अब जान नाम सुने होंगे कवि गंग का, अकबर के दरबार के रत्न माने जाते थे और बड़े विद्वान, सरस्वती का बड़ा आशीर्वाद था उस पर। और उन्होंने एक एक कथा लिखा है कि एक सिद्ध पुरुष था, सिद्ध पुरुष, सिद्ध जानते ना जो सब कुछ देख सकता है, 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अणिमा लधिमा विशित्व प्रकाशम आदि, सबको वश में करे, अणु बन जाए, महान बन जाए, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, हनुमान जी के विषय में हम गाते हैं। सिद्ध था तो उसके पास क्या सिद्धि थी, वो अणु हो जाता था, मतलब सबको देखता था, उसको कोई नहीं देखते थे, अजूबा देखा वो समझ जाएंगे, छोटे हो जाते, उसमें अमिताभ बच्चन छोटा हो जाता है, उसके ससुर की टोपी पे बैठता है, डांस करता है ऋषि कपूर के साथ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, या अली एकदम सबको देखता था, कोई उसे नहीं देखते थे। अब वो सब देखता था तो मनुष्यों के साथ साथ भूतों को भी देखता था। तो जिस गांव में वो सिद्धि तप कर रहा था उसमें देखा, गांव के कोने में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था और सबको देख रहा था लेकिन उसको कोई नहीं देख रहे थे। आप लोग सिद्ध होना चाहते हैं ऐसा नहीं, अच्छा बनिए ना, अच्छा है ना, मिस्टर इंडिया का तो कितना महत्व है, मुकेम्बो नाराज होगा बाकी सब तो खुश होंगे, गायब हो जाना, कुछ को नहीं देखना, हम सब देखते हैं। अरे भाई आजकल सब सिद्ध ही तो हो गए है ना, एक कवि ने लिखा है सिद्धि के ऊपर, भो भो दरिद्रा धन्यो त्वम, हे गरीबाय हे दरिद्रता तू धन्य है कि तू जब से मेरे घर आई है मैं सिद्ध हो गया हूं, क्योंकि मैं सबको देखता हूं लेकिन मुझे बिकार इनको मतलब देखा है पर कोई नजर नाखे तो ने, એટલે અત્યારે લગભગ 90% મોદી એ સિદ્ધ જ કરી નાખ્યા છે, આ નોટ ઉજાર થી આમ તેમ કહી રહી, કોઈ કોઈને દેખાતું મતલબ આમ દેખાય છે પણ સિદ્ધ ઘોડે દેખાય છતાં પશ્ચન અપી ન પશ્ચતી વાલી દશા હૈ। તો રાત મે બેઠા થા ભયંકર રોને કી આવાજ આઈ, ગંગ બોલ રહે સત્ય કથા, चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आई, तो ये सिद्ध था, डर तो था नहीं, देख तो सब रहा था। उसने देखा कि उस गांव में उस पीपल के पास उस घने जंगल में कई भूत लोग रो रहे थे, तो सिद्ध ने सोचा कि अरे ये सबको रुलाने वाले भूत प्रेत वो खुद क्यों रो रहे, जाके बात करता हूं। उसने कहा भूत भैया रो क्यों रहे हो, समस्या बताओ। वो सिद्ध था तो सब भूतों ने कहा रोए नहीं तो क्या करे, हमारा सरदार दुखी है तो हम दुखी नहीं होंगे क्या? बोले कौन है सरदार, सब एक जैसे ही लिखते दिखते हैं। शंकर जी ने जान संगे राखो सदा भूत टोली अंगे भस्म स्मशान निचोली। सब एक देख से एक बोले सरदार कौन है, बोले जो एकदम नीचे कोने में सबको हटाया है। सिद्ध ने बोले हटो दूर, हजारों भूतों को हटा के नीचे देखा, सरदार नीचे बैठ के रो रहा था। भूतों का उल्टा होता है, दूसरी जगह पे सरदार ऊंचे बैठता है, भूतों में सरदार नीचे बैठता है। मुझे भी आज अनुभव हो रहा है, कसम से थोड़ा ऊंचा आसन लग रहा है, इतना ऊंचा नहीं बना ये, इसके ऊपर ठीक था, ये डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो भी है भक्त लोग तो चाहते ही सबको चढ़ा ही देते, भले पढ़ दो पछी नहीं, आप लोग का तो शुद्ध भाव होगा लेकिन नीचे ही ठीक है। कर्मों से ऊपर जाना चाहिए, शरीर से वाणी से नीचे रहना चाहिए, ये वैष्णवता है। भैया क्यों रो रहे हो? बोले मेरी लड़की है ना वो कुवारी रह गई है। आपको भी लड़की होती है? भूतों का भी समाज होता है, सोसाइटी होती है, भूतनाथ सोसाइटी तो देखी होगी लेकिन भूत सोसाइटी नहीं देखी होगी आप, उसका भी बड़ा समाज होता है, सोसाइटी होता है। बोले हमारी लड़की कुवारी रह गई, क्या हो गया? बोले इस गांव में जो आए थे, जो आते ना, मतलब गांव में पहले चलता था अपने गुजराती में वणजारा कहवाय, जीवो वणजारा मने एकली मेली ने मत जाओ, मतलब वो ऐसे क्या कहते, चकड़ा लेकर गांव के गांव बाजार व्यापार के लिए घूमते थे। और उस जाति का एक सरदार जो गांव में कई दिनों से रुके थे, और उसका जो लड़का था वो बड़ा पापी था, और हमने सब भूतों ने जान लिया था कि ये मरेगा तब भूत बनेगा, और जब ये भूत बनेगा तो उससे हमारी लड़की की शादी कराएंगे भूत से भूतनी की। तो हुआ क्या? बोले लड़का तो मर गया, तो टेंशन क्या है? बोले जैसे ही वो मरा ना तो उस गांव में पता नहीं कौन व्यक्ति था जो गंगा जी में धोकर चादर लाया और चादर उड़ा दिया, वो भूत नहीं बना, भगवत धाम गया। अब एने ईज चादर मिली। कवि गंग कहते हैं कि गंग की धोई, गंगा की धोई चादर ओढ़ाए पे, गंगा से धोई हुई गंगा में पानी डाल के ला, कोई चादर उस मृतक देह पर जो आत्मा मर चुका था उसके ऊपर ओढ़ा दी। अब आत्मा शरीर छोड़ चुका है लेकिन उस देह को जब गंगा के धोई हुई चादर पानी का स्पर्श हुआ, वो पापी था, भूत बनने वाला था, लेकिन धन्य है भगवती गंगा कि वो भूत नहीं बना, पाप समाप्त होकर भगवत धाम वैकुंठ चला गया। और इसीलिए भूत लोग बोले हम माथा पीट रहे, हमारी लड़की अब बाट देख रहे कि सूरत में कोई मरे, क्योंकि भूत जैसा काम करे तो भूत बने, तो हमारी लड़की का फिर से मंगल फेरा हो, तब तक इंतजार रहेगा। सत्य बात है भागवत, भस्मी भूते न अंगे न स्वयाता सगर आत्मजा। सुखदेव जी कहते हैं कि आत्मा तो कब से अधम गति में चला गया था, अधोलोक में, वो राख भी आधी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन गंगा का जल जब भगीरथ जी लाए ना, भस्मी भूते न अंगे न स्वयाता सगर आत्मजा, सगर के 60,000 पुत्र जिनके देह राख हो चुके थे और उस राख में भी आधी राख उड़ चुकी थी, लेकिन उसको भी गंगा का स्पर्श हुआ, सगर के पुत्र स्वयाता भगवत धाम चले गए। किम पुनः श्रद्धया देवी सेवन्ते धृतव्रता। सुखदेव जी गंगा तट पर ही बोल रहे हैं भागवत में कि तो फिर ऐसी गंगा में जो प्रेम से नहाएगा उसका क्या कहना है। आज भगवती गंगा भगीरथ के कारण आई, इसको हम थोड़ा सा याद कर रहे हैं, और शिल प्रभुपाद ने हमें सौभाग्य दिया। वो गंगा इतनी महान है, भारत में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर 2500-2600 किलोमीटर में भारत के देश को पवित्र करती हुई बहती है, लेकिन आपके सूरत में नहीं आएगी, लेकिन शिल प्रभुपाद की कृपा से ये चैतन्य चरितामृत की गंगा, ये भागवत की गंगा आपकी सूरत क्या, आपके घर क्या, आपके दिल तक आ सकती है अगर आप दिल का दरवाजा खोलो तो। कान के रास्ते से कृष्ण कथा गंगा, चैतन्य कथा गौर गंगा प्रवेश करती है हृदय में। हम पर बहुत कृपा है भक्तों, गुरु की, संतों की, प्रभुपाद की, सबकी। अब एक काम आप करें, आप पूछोगे क्या? देखो प्रवचन तो आपने बहुत सुन लिए, हम क्या सुनाए आपको? एक से एक बड़े वक्ता को आपने सुना होगा, कई लोगों से। कुछ लोग तो गर्व करते हैं, मैं ओल्ला बापू हांभलेला, मैं ओल्ला हांभलेला। आपने तक ते फरक तो कहीं पीड़ो नहीं तारा, लेकिन आप, मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नई बात सुनाने नहीं आया। सुनने के लिए तो आपने हमसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों महात्माओं के सुन लिए हैं, और खुद भी बहुत कुछ जानते हैं भैया। बस हम इतना संदेश देने आए हैं कि ये कृपा है कि आप सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, भगवान की, गुरु की, संतों की, परंपरा की। लेकिन फिर भी हम देखते हैं श्रोता और वक्ता सबकी दशा दुर्दशा क्या, इतना सुनते कहते जानते समझते हुए भी 90% जीवन श्रोता वक्ताओं का देखा जा रहा है कि विषय भोगों से कोई वैराग्य नहीं, भगवत प्रेम भक्ति में कोई अनुराग नहीं, बस ऐसे की ऐसी मोह, ऐसे की ऐसा अहंकार, ऐसी की ऐसी क्रोध ईर्ष्या, एज इट इज। क्या कारण है? बुद्धिमान व्यक्ति सोचना चाहिए क्या कारण है, सोचना चाहिए कि नहीं, बताओ आप। वक्ताओं की दशा तो और खराब है, वक्ता तो यही समझते कि बस हम तो बोल दे हमारा हो गया, बस पालन तो सब श्रोता ही करेंगे। कुछ साथ में नहीं आएगा, सब मोह माया है, ऐसा बोलने वाले लाख लाख लेते हैं कथा का, बताओ। ये कलयुग है ना, कुछ साथ नहीं आएगा, सब छोड़ दो, ऐसा बोलने वाला वक्ता अंत में जो पोथी पे था वो भी उठा के ले गया, बोलो, मंदिर में नहीं दिया ये तो दशा है, मोह माया परिवार के प्रति एज इट इज बनी हुई है। तो भैया कमी कहां है? बुद्धिमान व्यक्ति को खोजना चाहिए, और खुद जान रहा है कितने लोगों को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सूरत में, मुंबई, भावनगर, कहीं भी रहता हो, आग में फूंक दिया है, खुद जलाते हुए देख लिया है अश्विनी कुमार में, फिर भी सोच रहा है नहीं अभी और कुछ करता हूं, फिर भी वो चीटिंग करता है, फिर भी झूठ बोलता है। मैं सब कंठीधारी की बात कर रहा हूं भैया, बोलिए महामंत्र एक बार प्रेम से जाग जाए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, मेरा निवेदन इतना है कि अब बस हम खुद अपने ऊपर कृपा करें, आज से हम खुद अपने आप पर कृपा करें कि इस पेट में अब पाप न डाले। पहला कृपा तो ये करे कि इस पेट में, अपने पेट पर कृपा करो कि कम से कम इसमें चाय बीड़ी तमाकू पाप मत डालो। प्रसाद डाल सकते हो, ज्यादा भी डाल सकते हो, पहली कृपा तो अपने हमें, क्योंकि जब हम खुद अपने आप पर कृपा नहीं करेंगे ना भक्तों, तब तक और कोई कितना भी कृपा करे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब हम खुद अपना उद्धार चाहे प्रयास करें तब दूसरा हमारा कर सकता है। आप वो अंग्रेजी कहवाते ना, गॉड हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसको मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करवाना चाहता है, नहीं तो दामोदर भी क्या करे बताओ। वो तो चाहते इसलिए तो अवतार लेते संभवामि युगे, गीता भागवत कहते, गीता भागवत कहने वाले भक्तों को भेजते हैं प्रभुपाद जी जैसे संतों को, लेकिन हम लोग तो उसको समझते नहीं। हरि केरा धाम माथी संत प्रकट थाय छे, पण दुनियानी दृष्टि में गांडा आवो सोखठा बाजी समझावे सार। आपणे तो गांड, ए तो बधा पागल छे, આપણે ફેક્ટરી નાખીએ એટલે બુદ્ધિમાન, હનુમાનજી એને જે કે ફેક્ટરી નો નાખી તો બુદ્ધિમત્તા વરિષ્ઠમ છે, બોલો કેમ કેમ સમજશું? બસ આજ સે હમ સુને બહોત હૈ લેકિન સંકલ્પ કરે કે આજ સે હમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કા જપ કરેંગે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ. હરિ નામ કી ગંગા જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભૂતલ પર લાયે, શિલ પ્રભુપાદ ને સ્થાપિતમ પૂરે વિશ્વ મે બહા દિયા. યે ભાગવત શુક મુખાદ અમૃતમ, યે પાવન પરંપરા પ્રભુપાદ ને પૂરે વિશ્વ મે બહા દિયા. અબ હમ અપની ઓર ઇસકો ખીંચે થો. હમ સંકલ્પ કરે કે આજ સે હમ વ્યસન પાપ નિદ્રા જો ભી હૈ નિંદા એ સબ દુર્ગુણો સે ઉપર ઉઠે ભૈયા, ઓર ભગવત ભજન કરે. કલ કા કોઈ ભરોસા નહીં, નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસો, કદા રુદ્ધો ભવિષ્યતિ, કબ શ્વાસ અટક જાયેગા ઓર હમ લટક જાયેંગે પતા નહીં ભૈયા. જિંદગી કી ગાડી એસે હી અટક જાયેગી, ઓર સાથ મે ક્યા આયેગા? યમરાજ જી તો ફિર હિસાબ લેંગે ક્યા આયેગા ભૈયા. હરિ નામ તો લિયા નહીં, ભાગવત ગંગા જલ પિયા નહીં. શંકરાચાર્ય ને તો કહા ના, ગંગા જલ લવ કણિકા પીતા, ભગવદ ગીતા કિંચિત ધીતા, ક્રિયતે યસ્ય મુરારી ચમરચા, સકૃત અપિ મુરારી સમરચા, ક્રિયતે તસ્ય ન યમે ન ચર્ચા. ભજ ગોવિંદમ, ભગવદ ગીતા કિંચિત ધીતા, ગંગા જલ લવ કણિકા ન પીતા, સિક્રિત પીએ ન મુરારી ચમરચા, ક્રિયતે તસ્ય નયમે ન ચર્ચા. ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. ભગવાન શિવ શંકરાચાર્ય બનકર ભૂતલ પર આયે ઓર નિવેદન કર રહે હૈ કે ગોવિંદ કા ભજન કરો. હમ લોગ ભી દૂસરો કહે તો ભજન કરો, ખુદ ભોજન કરો. તુમ ભજન કરો, હમ ભોજન કરતે નહીં ભૈયા. સમય પાસ નહીં કરના હૈ, જૂઠે રિશ્તે નાતે કી મોહ માયા મેં ઉલઝના નહીં હૈ, ઉસકો નિભાના હૈ કર્તવ્ય સમજ કર, નીતિ સે જીના હૈ, લેકિન પ્રીતિ કેવલ રાધા દામોદર સે કરના હૈ. પ્રીતિ યહાં હોની ચાહિયે, સ્નેહ વહાં હોના ચાહિયે બસ. ઓર યે યે આ અવસર જો ચૂકી ગયા ને તો ખાશો જમના માર. આવું ભજનમાં આવે છે, ગુજરાતી ભજનમાં. અગર યે અવસર ચૂક ગયે ના તો માર ખાના પડેગા ફિર યમરાજ કે. લેકિન અગર ગીતા પડા હૈ, ગંગા જલ પિયા હૈ, ભગવાન શ્રી રાધા દામોદર કી આરતી મેં ખડા રહા હૈ, નર્તન કથા શ્રવણ કિયા હૈ, તો યમરાજ મારને કી લે જાને કી બાત છોડો, છૂ ભી નહીં સકતા, ઉસકી ચર્ચા ભી નહીં કર સકતા. યે યે લાભ બતા રહે શંકરાચાર્ય. ઇસલિયે સાવધાન, ઔષધિ જાનવી તોયમ વૈદ્યો નારાયણો હરિ. શરીર જર્જરી ભૂતે, એ શરીર જર્જર હોને વાલા હૈ, આજ નહીં તો કલ હો રહા હૈ, હો ચુકા હૈ, હોગા. ઓર વ્યાધિ ગ્રસ્તે તથા પરે, ઉપર સે અલગ અલગ રોગ આયેંગે. દો હી ઉપાય હૈ, ઔષધિ ગંગા જલ હૈ, ઓર વૈદ્ય નારાયણ હરિ હૈ. નારાયણ કા નામ વાસ્તવ મેં ઔષધિ હૈ, ઉસકો પીજીએ. રામ નામ કી ઔષધિ જો ખરી રીતિ સે ખાય, ભવ પીડા વ્યાપે નહીં, જન્મ મરણ મિટ જાય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. આજ હુવા તો દહેશત નહીં, કાલ તમે નહોતા હોતા કારણ કે ગરમી થતી હતી, આજ થોડીક ટાટક છે અને પાછા પ્રસાદ લઈને બેઠા છે એટલે મહામંત્ર તો હાલશે જ, કમ સે કમ જાગ જાય. ઔષધિ કી બાત હે ના, પી લેના ચાહીએ ના. હરિ નામ કી ઔષધિ હૈ ભાઈ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને છી ઔષધિ માયા નાશીબાર લાગી, સેઈ મહામંત્ર લવ તુમી માગી. એસે યમરાજ તો ઇસ સંસાર મેં ભી હૈ. એક ભગત ને કહતા થા કે વૈદ્ય જો હૈ ના ડોક્ટર, યે ભી સબ યમરાજ કે અવતાર હી તો હૈ. વો કહેતે વેદરાજ નમસ્તુભ્યમ યમરાજ સહોદરમ, સ संस्कृत भाषा का थोड़ा आस्वादन करिएगा। वेदराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरम, सहोदरम मतलब हगो भाई, एक उदर मायवा हुए ना कई रीते भाई, डॉक्टर ने वेद ने यमराज एक थाय, भाईओ केम थाय, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। लोग पूछते हनुमान जी भरत जैसा भाई क्यों, कथा भी है वाल्मीकि ने लिखा है, केवल भावुकता नहीं है, है लीला है हनुमान जी की। ऐसे ही क्यों एक, बोले एक है वेदराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरम, यमराज हरति प्राणानी, वेद हरति प्राणानी धनानी, यमराज प्राण ले पैसा नहीं, आ तो बे ले, अमुक नो मोटो भाई निकलो या तो यमनो बाप, क्योंकि यमराज तो प्राणानी हरती ना, पण वैद्य प्राणानी तत्परे तत्साथ धनानी होते, कोरो करीन पिसक्या बापूजी नहीं थिर्या, तो अड़ी तो लई गयो ऑपरेशन ना सीख्यो, ताड़ी दीधा, हूँ करवानू बताओ। ऐसी दशा है, लेकिन वैद्यो नारायणम हरि, नारायण का नाम भगवान वास्तविक में वैद्य है, जो जीवन देते हैं, वास्तविक संजीवनी बुटी जो है अमरत्व की, ये चैतन्य महाप्रभु लाए हैं, जिनकी कथा को सुनने आप सब बैठे हैं। आज आज और भी एक दिन है, आज बलदेव विद्याभूषण का तिरोभाव तिथि है, आज गंगा माता गोस्वामी का जन्मदिन है। अब ये सब कौन कौन है आप भक्तों से कभी पूछिएगा टाइम मिले तो, क्योंकि मैं उन सब की कथा कहने जाऊंगा ना तो चैतन्य कथा छूट जाएगी, लेकिन हमने केवल गंगा जी को तो आज याद करना था, उसको तो सूर्यवंश के राजाओं को कुछ जानकारी हमने दिया भागवत से रामायण से जो जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया कि कैसे दर्शन करना चाहिए। रोज जगन्नाथ का दर्शन चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में चार चार पांच पांच घंटे करते थे, और जब जगन्नाथ को देखते थे तो ऐसे देखते थे जैसे कमल की पंखड़ी पर कोई भंवर रस ले रहा हो, चैतन्य महाप्रभु के नेत्र कमल बन जाते थे, और कमल नयन जगन्नाथ जी तो है ही है। कविराज महानुभाव ने चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन करते थे उसका सुंदर वर्णन दिया है शब्दों में, ताकि हमें सीखने मिले कि हमें कैसे दर्शन करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं संत लोग कि कलयुग में कृष्ण के दर्शन कानों से पहले करना चाहिए फिर आंखों से, कलयुग में कृष्ण के दर्शन कान से पहले करना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे जगन्नाथ जी को, सुनिए सुंदर लीला जो कविराज महानुभाव ने लिखी है, बड़े मधुर पवित्र और प्रेम से भरे हुए शब्द है, श्रोता और वक्ता को धन्य करने वाले। हमको कोई ज्यादा उपदेश सिद्धांत फिलोसॉफी इतना झड़ना भी नहीं है, आप लोग सब सुन चुके हो, हम तो गाने आए हैं, कुछ लीला शब्द एज इट इज सुनाने आए हैं, क्योंकि जो शुद्ध होगा ना वो अपने आप सुंदर बन जाएगा। हर सुंदर वस्तु शुद्ध नहीं होती, लेकिन जो शुद्ध है वो हर सुंदर है, जो शुद्ध है वो सुंदर है। गुजराती में लिखो चाहे हिंदी में, एक बड़ा प्यारा शब्द है वो हम आपको बनाना चाहते हैं, सरस, आमथी वाँचो तो ही सरस, आमथी वाँचो तो ही एवा बनू सरस, रस के साथ। जेबे देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, चैतन्य महाप्रभु जेबे जब जेबे देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जानी आइलाम कुरुक्षेत्रे। राधा भाव में अपने आप को समझते थे कि मैं कहां खड़ा हूं, पुरी में नहीं कुरुक्षेत्र में। क्यों ऐसा सोचते, आप लीला तो जानते होंगे भागवत जी के अनुसार कि कृष्ण आयास्य इति दौत्ये दूत को कहा कि बोल दो गोपियों को, अक्रूर के रथ के सामने गोपियों ने अपने शरीर डाल दिए। बोले अक्रूर जी शरीर पर रथ ले जाओ तो ले जाओ, बाकी कन्हैया को जाने नहीं देंगे मथुरा। तब भगवान कहते हैं आयास्य आऊंगा, आई एम कमिंग, व्हेन नो टाइम, कब वो नहीं बोला, लेकिन आऊंगा, आई विल कम, मैं बस आऊंगा, कब क्या कैसे कुछ नहीं बोलने का टाइम दिया, रथ चढ़ा दिया। गोपियां रोती रह गई। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। उसके बाद 99 बीत गए भैया, और जब कुरुक्षेत्र में देखा कृष्ण को गोपियों ने, क्योंकि ब्रह्म कुंड में स्नान करते ब्रह्म सरोवर सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका से 16,000 पटरानियों के साथ 108 महापटरानियों के साथ द्वारिकाधीश गए थे, और गोकुल से नंद यशोदा गोपिया भी आई थी, और कन्हैया को जब नेत्रों से देखती है तो गंगा जमुना नेत्रों से बहती है, ऐसे बहती रहती थी, सदा रहत पावस ऋतु ब्रज में, जब से शाम सिधारे, लेकिन जिनको याद करती थी दिल में देखती थी वे आज जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नैनो के रस्ते में खड़े हैं। तब कहते हैं कि ये क्या सिंगार है, राजवेश था ना, सुवर्ण मुकुट रत्न जड़ित हीरे मोतियों की माला, गोकुल में तो वो टेढ़ी पगड़ी उसमें मोरपीछ और वैजंती माला, सब बदल गए भाई, शहरी बाबू बन गए आप तो। तो गोपियों को पसंद नहीं आया, बोले बंसी कहाँ है। तब गोपियों ने कहा उतारो इसको और चलो वृंदावन, खींच के ले गई। यही तो रथ यात्रा है, आवे से हो भाई, आवे से आवे से, मारो वालो गोकुल मा, आवे से भाई रथ यात्रा। कौन सा दिन है रथ यात्रा का, हाँ तारीख बारीख महीना से मतलब नहीं, हमको क्या मतलब होना चाहिए, अषाढ़ी बीज। ए कोटर कोटरे में हुटहु किया, अने ओली आकाश जब की वी, ए मारा रिदिया ने राणो हांभरो, ए ओली आवी अषाढ़ी, अषाढ़ उचारम मेघ मलारम, तड़को क्यारे जाया जेठ क्यारे जाए, बहु तपे कारण वगैरह ना खोखारा तो बन थे, पण तपवानु सालू से, कब जेठ जाए और अषाढ़ आए, मोर लाता हूं के अने वरसाद रिमझिम, शीतल काया शीतल होत समीर शरीर। एक इंतजार रहता था ना, गोपियों का दिल कृष्ण विरह अग्नि में जलता रहता, बनी बहारम जलधारम, नंद कुमारन निरख्यारी जो गाया जाता है गुजराती छंदों में, सौराष्ट्र नो मधुपुड़ो भाई, ये भी एक रस है, गुजरात में जन्म लेव ई भाग्य से भाई, गुजराती का ओछा नहीं, कारण के आखा विश्व नो रेकॉर्ड से सौथी पहलो प्रेम पत्र लखाणो होय ने तो ई गुजराती ने, द्वारिकाधीश की पछी दुनिया ने खबर पड़ी गरबा हूं, आ ढोकला थेपला खाली नथी मरसा, अरे तीखो एटले हो बस, गुजराती बच्चा। एनीवे, लेकिन भगवान जगन्नाथ को जब गोपी राधा भाव चैतन्य महाप्रभु पुरी में, तबे जानी माइलाम कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र याद आ गया, यह कौमार हरम, जो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का भाव ताल पत्र में लिख दिया था, रेवा रोद सी तरुतले, सब कुछ कृष्ण आप वही हो, मैं राधा वही हूं, लेकिन वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, वो मुरली नहीं है, वो रास नहीं है, वो कदंब नहीं है, चलो वृंदावन। ये भाव है रथ यात्रा का, कि भगवान को अपने हृदय वृंदावन में खींचना। चैतन्य महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं और फिर क्या सोच रहे, जगन्नाथ को अपने नेत्रों से जब देखते हैं, नेत्र भर भर के नेत्रों के रास्ते से हृदय में उतारते हैं, तब कविराज महानुभाव चैतन्य महाप्रभु का हृदय पहचान जाते हैं और अपनी कलम चलाते हैं। सफल हैला जीवाना देखी मु पद्म लोचना जुड़ाई लतनु मन नेत्र। आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं अपने नैनों से कमल नयन को देख रहा हूं। आज मेरा मन आनंद में है, मेरे नेत्र आनंद में है, आज पूरे शरीर में रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। चैतन्य महाप्रभु जगन, आप भी जगन्नाथ को देखते हैं, राधा दामोदर को देखते हैं। देखिए दर्शन है लेकिन साथ में दर्शन है, दर्शन के साथ दर्शन, मतलब कैसे दर्शन करना चाहिए, फिलोसॉफी। दर्शन का एक अर्थ फिलोसॉफी होता है, सिद्धांत से समझना क्या है इसके अंदर। भगवान को ऐसे देखना चाहिए कि आंखों के रास्ते कहां बिठाना चाहिए, ये बंगला है, इसको हिंदी में एक भक्त ने कन्वर्ट किया, जैसे होता है ना मलयालम बाहुबली, हिंदी में होता ना कन्वर्ट हो जाता है, पैसा कमाते हैं, तो इसको, ये तो बंगला है, इसको हिंदी में, जिन्हें तुमने मंदिर के अंदर है देखा उन्हें मन के अंदर बिठा करके देखो। समझ में आई, जिन्हें तुमने मंदिर के अंदर है देखा, अब दूसरा काम क्या करो, उन्हें मन के अंदर बिठा करके देखो। दुनिया को अपना बना करके देखा, प्यारे दामोदर को अपना बना करके देखो। एक बात हमारी सुन लो, ट्राई कर लो, कैसा रहेगा फिर पता चलेगा। ये सामान्य नहीं है, शबरी के जूठे बेर खाने वाला, सुदामा का चावल चबाने वाला, ये राजाधिराज राजेश्वर है राजा राम, और जिसको भगवत गीता योगेश्वर कहती है, ये है दामोदर जगन्नाथ। सामान्य थोड़ी है, जरा अंदर बिठा करके देखो। वसुदेव जी ने गोद में लिया, पानी में रास्ता हो गया भाई, यही तो भागवत कृष्ण जन्म है ना। अब जरा ट्राई तो करो, अरे उसका नाम जीभ पर लोगे करोड़ों जन्मों के कर्म बंधन टूट जाएंगे, अगर वो दिल में आ गया तब तो क्या कहना। तो यही बात, चैतन्य महाप्रभु ने अपने नेत्र सफल किए, आज मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा नेत्र सब आनंद में। हम लोग तो मंदिर में आते फिर भी नजर चप्पल और गाड़ी पर ही रहती, कोई छू न ले कोई ले न जाए, ये दशा है। लेकिन धन्य है चैतन्य महाप्रभु, फिर क्या किए, अपने घर जाते थे। गंभीरा नाम सुना होगा आपने, पुरी में महाप्रभु जहां 18 वर्ष निवास किए, राधाकांत मत मत है आज उसका नाम, पुरी गंभीरा, जहां गंभीर लीलाएं हुई, राधा भाव में कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन, राधाया प्रणय महिमा जो अतरंग कारण, वो लीला वहां की सिखाया कि हमें भी ये करना है जीवन के अंत काल में। पहले भगवान की लीलाओं का चिंतन स्मरण, ये धन है। केवल उलझे नहीं रहना है पॉलिटिक्स में, पद में, सेवा के नाम पर केवल इंद्रिय तृप्ति, युक्त वैराग्य के नाम पर केवल भोग प्रवृत्ति, और बस दुनिया में नाम पद प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला केवल नाम का भगत है, ऐसे भगत कभी लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। थोड़ा ज्यादा बोल दिया लगता है, लेकिन इसलिए फास्ट बोल दिया कि सुना नहीं सुना चलो जाने दो। दुनिया की वाह वाह मिलेगी लेकिन दामोदर प्रसन्न नहीं होंगे, याद रखिएगा। जीवन का लक्ष्य संसिद्धि हरितोषणम, गुरु और भगवान को प्रसन्न करना है, ये याद रखना चाहिए। प्रत्येक दीक्षित भक्त को याद रखना चाहिए कि आज से मेरे जीवन का लक्ष्य गुरु और भगवान को प्रसन्न करना है। गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य, करते हैं पत्नी मुख पद्म वाक्य, बॉस मुख पद्म वाक्य, फिर कितना ही ऊंचे जंप लगा लो, प्रभुपाद जी अच्छे कि उठकर मारते नहीं, करुणा सिंधु है ना श्री गुरु, लेकिन ज्यादा फायदा उठाना अच्छा नहीं है भैया। जीवन अनमोल, एक एक सांस जो आप अभी ले रहे हो ना इतने शांति से, एक समय आएगा करोड़ों देंगे डॉक्टर परिवार तरसते रह जाएंगे, आप आहें भरते एक सांस नहीं ले पाओगे जीवन में, अंत में कितनी कीमती है तब समझ में आएगा। आज उड़ा रहे हो ना ऐसे ही, ये प्रत्येक सांस भी सुन ले जो बहू को सांस नहीं लेने देती कि सांस की बड़ी कीमत है। एक सांस के लिए भैया तरस जाएंगे उस दिन जब वो अंतिम समय आएगा, और वो सांस कौन दे रहा है? ये श्याम सुंदर दे रहा है जिसके भजन करने का हमारे पास टाइम नहीं है अभी, जिनको देखने आने का टाइम नहीं है संडे को भी, और आते तब भी दुनियादारी करने के लिए, कैसे मन होगा? इसलिए साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी, हमारे राधा दामोदर है, और उसकी भक्ति दिया उस प्रभुपाद, ये परंपरा, ये वैष्णव हमारा, उनको प्रसन्न करना है, उनको संतुष्ट करना है। एक प्रयास भी, एक कदम भी लोगे ना, भगवान बहुत करुणामय है, छोटी सी सेवा को हिमालय जितना मानकर गोद में उठा लेंगे। ट्राई तो करो, मन के अंदर बिठा कर तो देखो। लेकिन हम लोग कहते बड़ा बतू मंदिर में बैठा रहे, नहीं, उसको मन में बिठाना है। महाप्रभु गए गंभीरा में और क्या किए सुनिए, बड़ी सूक्ष्म सुंदर लीला है। ताहा है ते घरे वसी, ध्यान से सुनेंगे ना, दास को विश्वास है सुख आनंद भी मिलेगा और साथ साथ में पवित्रता और प्रेम भी पाओगे। ताहा है ते घरे वसी, घर में गए, आप भी दर्शन करके संडे घर जाते ही होंगे। माटी र ऊपर वसी, कहां बैठे चैतन्य महाप्रभु? पलंग पे, सोफे पे, गद्दे पे नहीं, नीचे बैठे गंभीरा में, पूरी धाम में। और क्या कर रहे हैं? नखे करे पृथ्वी लेखन, बोलिए, नखे करे पृथ्वी लेखन। अपने चरण कमल के अंगूठे के जो नख है, जो पूनम के चांद को भी फीका करे, इतना धवल उज्जवल श्वेत प्रकाश निकल रहा था चैतन्य महाप्रभु के लाल गुलाबी चारों चरण कमल के उस नख से, और वो नख से पृथ्वी पर लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे जानने की इच्छा तो होगी? महाप्रभु राधा भाव में पृथ्वी पर नख से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हाँ हाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ कहाँ है मेरा वृंदावन? नख से लिख रहे हैं वृंदावन, वृंदावन धाम की। महाप्रभु हाँ हाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ यमुना पुलिन, कहाँ मोरा मदन मोहन, बोलिए, हाँ हाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ यमुना पुलिन, कहाँ मोरा मदन मोहन। બે હજારની નોટ હાટો જેટલું બેંકની લાઈનમાં ઉભા રહ્યા ને, એનાથી એક ટકો અહીં ઉભા રહ્યા હોત ને, ગેટ ખોલી જાત ગોલોક, એક ટકો એમાંથી, 100% એટલો ભાવ ને એટલી ચાહ ને એટલી દિલથી, એક પર્સન ભી જો સંસાર મેં આસક્તિ પ્રયાસ પરિશ્રમ હૈ ઉસકા એક પર્સન ભી અગર આ જાય ના યહાં પર બેડા પાર હૈ, ક્યોંકિ પૂર્ણ મદમ અવશિષ કુછ ભી હૈ યહાં પૂર્ણ હૈ, और संसार में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। सुखी वह है जो समझ जाए कि संसार में सुख नहीं है, सुख कृष्ण की भक्ति में है। चैतन्य महाप्रभु कहां मोरा मदन मोहन, एक प्रेम लीला। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से पृथ्वी पर लिख रहे हैं। ये जो प्रेमवती नारी होती है, नायिका कोई स्त्री, उसका एक स्वभाव होता है कि वो जब विरह में दुख में होती है तब अपने नख से पृथ्वी में लिखती है। ये सूरत वाले नहीं समझ पाएंगे, या सूरत वाली भी नहीं समझ पाएगी, जब से देखी है हे दामोदर तेरी सूरत, सुधर गए मेरे जिंदगी के सारे मुहूर्त। वो समझ पाएगा, खाली सूरत में रेवा थी ए आईला यहाँ क्या गेलो टोबी आवेलो ई नहीं समझे, केवल सूरती नहीं समझेगा। ये प्रसाद लीडेलो के नीटे लीडेलो ई माटे तो आवेलो, મને તો ખબર હતી કે આ પછી બી એક કલાક ગઈ કલાક માટું ખાસ મારું ભૂલથી બેસી ગયો, એસે લોગ નહીં સમજેંગે ભૈયા। જિસકા હૃદય કુછ કુછ પ્રેમ તત્વ કો પાયા હૈ ઉસકે લિયે યે બાત હૈ। ભાગવતજી મેં રાસ પંચાય અધ્યાય મેં કૃષ્ણ જબ વૃંદાવન યમુના તટ સે જબ અંતર ધ્યાન હો ગયે ના, तब गोपिया गोपी गीत गाती है उसके पहले कृष्ण अन्वेषण 29वां अध्याय, कृष्ण की खोज करती है यमुना कहाँ गए, कहाँ मोरा मदन मोहन। ये भक्ति है, जितना हम पैसे नोट पत्नी पुत्र या संसार के पीछे भाग रहे, कभी ऐसा दामोदर के पीछे भागो? हाँ हाँ राधे गोस्वामी क्या करते थे हमारे रूप सनातन, सठ गोस्वामी अष्टकम का अंतिम श्लोक किसको पता है? एक दो माताओं में कोई एक तो हाथ खड़ा कर दो मैया, माताओं ने बद्दू आवड़े पण के नहीं, बाकी आवड़तू जो है ये तो मने विश्वास। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतह, हे राधा हे ललिता हे नंद नंदन कुतह आप कहां हो? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्ने कुतह। क्या आप यमुना के तट पर हो? क्या आप कदम के वृक्ष के नीचे कहीं गोवर्धन की तलेटी में हो? गोवर्धन की तलेटी तो एक बार राजा गिरिराज की, कुछ ऐसे पर्वत है भैया हमारे भारतवर्ष में जिसकी तलेटी में जिसके पत्थर के पास जाने पर प्रेम मिलता है। हम अभी मैं कल बताया ना नरसिंह मेहता के गांव में गिरनार में था, मैं एक भजन याद कर रहा था एक संत से सुना था, जब गिरिराज में गिरनार में हम गए, हम ज्यादा चढ़े नहीं, कोई भगत बोला 10,000 स्टेप है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ तो ट्राई करते हैं, तो 50-25 चढ़े, फिर हमने सोचा कि रहने देते हैं फालतू में कोलेस्ट्रॉल घट जाए। रात हो गई थी 10 बज गया था, तो लेकिन एक लाइन याद आ रहा था वहां पर गुजराती में एक भजन था, तलेटी मां जाई तो एवु लाग्या करे छे हजी कांक करता वाग्या करे छे। गिरनार की तलेटी में कभी जाओ, पवित्र मन होगा तब नरसिंह मेहता की करताल आज भी बजती है, जिस करताल पर द्वारकाधीश नाचते हुए आ जाते थे काम करने के लिए। तलेटी मां जाई तो एवू लाग्या करे छे कि हजी काई करताल वाग्या करे। મોટા મા બહુ એમ ક્યારેય ન વાગે, કારણ કે ત્યાં એવા જ મળ્યા મને, મેં કીધું આને ક્યાં કરતા લઈને ક્યાં લેવા દેવા, જેના હાથમાં માળા હોય ને એને આવું લાગ્યા કરે, માવા ને માળા। તળેટીમાં જાય તો, પણ આપણે તો તળેટીમાં જઈ દેખાડવા માટે ગોવર્ધન પરિક્રમા મૂકો, હું ગોવર્ધન ગયો તો તું સુરતમાં છો હજી, તું નથી ગયો ગોવર્ધન, દેખાડવા ગયો છો તું, સહી હે કે બધા બધા હમ યાત્રા કરતે હૈ દિખાને કે લિયે। હમારે ગોસ્વામી કે વિષય મેં વર્ણન હૈ, સનાતન ગોસ્વામી તો રોજ પરિક્રમા કરતે, એક ભી સેલ્ફી નહીં ખીચા ના કિસી કો, આપણે તો એક હજી અડધી નો કરી હોય ત્યાં ફોટા જો કરું છું, પાછો રિક્ષા બે ગયો એ મોકલ, આપણને એમ થાય ગોલા એ કરી એને ન કરી હોય, એસી દશા। મતલબ ફોટો ખીચના બુરા નહીં, હમ એ નહીં કહે રહે કે નહીં ખીચના ચાહીએ, ખેંચવાનું આપણે હું કામ ફોન લીધો છે, કોકની ખેંચવા તો લીધો છે તો આપણી નાપડી નો ખેંચી પેલા નસ, खींचना चाहिए, लेकिन मैं भाव की बात कर रहा हूं कि ये भजन दिखाने का, आ दिखावाने गुजराती में बहु हारो शब्द काठियावाड़ी में कहू, तम कहता हो तो कहू, पडारो बन करो। हरे पधारो पधारो, हवे भक्ति ना राज्य मा पधारो, पडारो नहीं, केवल अपने और अपने परिवार और अपने ही लोगों के बखान करते रहना, हमारे प्रभु जी एम, हमारी माता जी एम, हमें ये, तमे मत बोलो, सूर्य उगे ने ई झालर न वगाड़े भाई के हूँ उग्यो, ई खबर पड़ी जाए, ई पड़ी जाशे, हाथे करीने ओछी न करशो, આપડી અને આપણાની। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કુછ હિન્દી વાલે કહે સકતે પ્રભુજી એ તો હમકો નહીં બોલા, આપકો જરૂરત નહીં, આ અમારું હતું, આ અમારું વાત હતી, અમને ફાવી ગયેલી ની વાત, હિન્દી વાલે તો થોડા કમ, એને તો કોઈ સાંભળે ત્યારે ને, એટલે જરૂરત ઉનકો તો નહીં થાય, એ પડારો એને સમજને કી ભી જ્યાદા જરૂરત નહીં હૈ। गिरिराज, गोवर्धन तटे कहाँ हो आप, घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे खेर दे महा विहवलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। हमारे रूप सनातन, जिस पावन परंपरा के हम रूपानुग कहे जाते हैं, ये हमारे गोस्वामी रात दिन रोते रहते थे, हे कृष्ण हे गोविंद, 22 घंटा भजन करते थे, 2 घंटा सोते खाते पीते थे, अष्ट प्रहर भजन चारी दंड शयने, कविराज जी ने लिखा है, और केह दिन नहे, और कभी कभी इतनी भजन में मस्ती आती थी कि 2 घंटा भी नहीं सोते थे, और हम लोग 22 घंटा खाते पीते सोते, 2 घंटा माला करते उसमें भी सोते, अब बताओ, कभी सोचना चाहिए कि हम किस परंपरा के हैं, कभी तो सोचो, ये 22 घंटा भजन और 2 घंटा खाते पीते, वो भी कभी कभी नहीं, और हम लोग 2 घंटा 16 माला में भी कितना सो देते थे, ये हमारे गोस्वामी है, हम उस पावन परंपरा के हैं जो हमारे पूर्वज हमारे आचार्य इस प्रेम के संपदा के धनी माने जाते थे, इसलिए हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी बनती है, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हो एक आइडियल एक आदर्श है, आदर्श समाज का निर्माण अपने आचरण से करना है, और ये चैतन्य चरितामृत सिखाता है, साधना, हमारी साधना जो है, हम चाहते हैं कि चैतन्य चरितामृत के श्रोता इतने सावधान हो जाए इस प्रवचन को सुनकर, पहले जैसे हमने संकल्प की बात की, अपने ऊपर कृपा की बात की, लीला के अंतर्गत संदेश संदेश सिद्धांत आ रहे हैं, स्मरण और आदत भी यही है, तो क्या करें, साधना हमारी चित्ते की चाल जैसी होनी चाहिए, चित्ता जागवार, जागवार कंपनी वालों ने चित्ता पेंट किया अपनी गाड़ी पे, मतलब वो बहुत दौड़ता है ना, अपनी साधना तो केवी ओली गोकल गाय जेवी, रविवार घड़ी का आवता रविवार आवी शवे टाटो टाटो, वो होता है ना, गोप मतवेंद्र महोस्व कर्म बंधान रूप फल भाजन मात नोति कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी जिस कीड़े की बात करते हो, गोपेंद्र कीड़ा, गुजराती मैंने गोकल गाय कहवाय, टाढ़ी टाढ़ी, तमे धीरे धीरे कोक धक्को मारे त्यार एक माला करी शवे, ले अपने कई माला करो, 2 माला करी शवे, उपकार एकदम स्लो, नहीं चित्ते की तरह, जीवन का क्या भरोसा, हमारे गोस्वामी और केवल रोकी रोटी चबाए, चना और रुखी रोटी खा जाते थे बिना घी की हवा के साथ, हमको तो इतना आइटम होता है फिर भी चटनी नथी, ले पापड़ नथी, आप बीजी 15 आइटम से ही खाने, रोटी चना केवल चबा लेते, 4 दंड, कभी कभी 4-4 दिन में छाछ पी लेते, लेकिन भजन में महामंत्र में कोई आलस नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि काल थोड़ी कम थे बपोर हुदी क्या हमारा वही हांज हुदी पोगे। कुछ लोग प्लान में होते 12 बजे तक यानी हम था एक हांज हुदी खे हूं मन था थोड़ा कम इनको छूने से कुछ तो उत्साह बढ़े। ये रूप सनातन और ऐसी परंपरा में ऐसी साधना शुद्ध हृदय वो समझेगा कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में लिखते हैं भूमि पर। ऐसे ही राधा रानी ऐसे ही जब वृंदावन की गोपियां रासलीला में शरद पूर्णिमा यमुना तट पर जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए चरणेन भुव लिखंत्य भागवत 29:29 10:29:29 सुख जी कहते हैं कि सारी गोपियां आंखों से अश्रु बहाते हुए रोते रोते भूमि पे लिखने लगी। स्त्रियां जब विरह के दुख में होती है तो स्वभाव है स्त्रियों का कि वो नख से भूमि लिखती है। अपने हूं के भाई जमीन खोतरवी पग से आप में से कोई नहीं किया होगा मुझे विश्वास है कारण के मार्बल खोतरे नख टूटी जाए जमीन हो भी जाए ना इतले नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये गांव की ब्रज की मधुर लीला है। भागवत में वर्णन है रुक्मणी मैया 10वें स्कंद में 60वें अध्याय 50 नंबर श्लोक नख मणि स्त्रिया जिनके नख एकदम मणि जैसे समक रहे थे जिसको देखने के लिए देवता तरसते थे लेकिन रुक्मणी अपने पैरों के नख को भी ढक के रखती थी अपने साड़ी के पल्लू से स्लीवलेस वाले क्या समझेंगे। हरे कृष्णा हरे तुम बता अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा समझता लागो मारी जेम हूँ थोड़ो थोड़ो समझो काम पूरत एम थोड़ो थोड़ो बधु समझवा हारू पड़े कुछ कुछ जानना होता है क्योंकि कुछ कुछ तो होता है पूरा संसार कुछ कुछ होता है भाई तो कुछ कुछ तो समझिए। आज हम लीला भी चैतन्य महाप्रभु की कुछ कुछ ही तो समझ रहे हैं। कृष्ण ने जब रुक्मणी मैया का मजाक किया रुक्मणी मैया चामर डुला रही थी सफेद और कृष्ण सोने के सिंहासन पे झूलन पे झूला झूल रहे थे और रुक्मणी मैया चामर डुला रही थी। आजकल तो ये हो नहीं सकता कि पति बैठे और आप पंखा आवे तो करिए और मावता है बंद थी गया नहीं तो पहला आवता विंजनो अभी जरूरत नहीं ना टेबल फैन आ गया एसी आ गया तो क्या जरूरत। और पति लोग चाहते भी नहीं बस एम के बस परसे वो वाली न देता लूसवो नहीं ये अमे लूसी नाखसु तमे बस वाल दी देता बाकी अमारे ये आशा ही नहीं। हाँ एवं एक सासूए फोन करो जमाई ने हूं करो जमाई के सहन कोने के तुम्हारी दीकरी ने आवी त्यार थी सहन कर इसकोन मा तो जाऊ थी त्रिनादपी सुनी तरो रिवस सहिष्णुना समझो नहीं लगन त्या पे समझी जो तरो रिवस सहिष्णुना कोने ये दशा है। रुक्मणी को कृष्ण ने कहा कि आज भी तुम्हें अफसोस हो तो मैं तुम्हें ऑफर देता हूं कि मुझे छोड़कर किसी और को पसंद कर सकती हो। अब बताओ जो रुक्मणी ने कहा था कि हे कृष्ण आपके अलावा कोई मुझे छू भी लिया ना मैं मर जाऊंगा आपके अलावा कोई मेरे शरीर को छूना नहीं चाहिए। रुक्मणी अपने पत्र में लिखती है कि हे अंबुजाक्ष न लभे ये तब प्रसाद हे कमल नयन आपकी पत्नी नहीं भी नहीं बनी नहीं बनी आपका प्रसाद नहीं मिला तो 100 जन्म भी भले लेना पड़े व्रत तब उपवास करना पड़े एक दिन में भीम अग्यारस नहीं आखू वर भीम अग्यारस करवी पड़े करीश पण पति तो तुमने ज बनाविश पति तो आपको बनाऊंगी। और ऐसा बोलने वाली रुक्मणी को कृष्ण कह रहे हैं कि किसी और को आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में हमने पत्र लिख दिया और मैं पहुंच गया तो मैं आपको चांस देता हूं। और ऐसे भी देखो सच कहे रुक्मणी तुम घरवाली हो मैं सूरत वालों जैसा नहीं हूं कि पत्नी के सामने भी झूठ बोलूं सच बोलता हूं प्रिय कि मुझे स्त्रियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ मुझे स्त्रियों में ना इंटरेस्ट है ना जरूरत है। आत्माराम पुरुष है तो है और तीसरी बात, ऐसे भी मेरे भगत सब भिखमंगे गुण गाते रहते हैं, और ऐसे भी बहुत राजाओं से मेरा वैर है, ऐसे भी डर के मारे समुद्र में छुप रहा हूं, सब भगवान अपना दोष बता रहे, इसलिए अब तुम मुझे छोड़ के किसी और को अगर चाहो तो। इतना सुनते ही रुक्मणी के हाथ से वो पंखा भी गिर गया, खुद भी गिर गई, मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई ना, कृष्ण उठे और उसको अखबार में आलिंगन में गोद में ले लिए, गिरने नहीं दिया। पति नु एटलो तो खबेट होवी जोई के पड़वा न देवा है, ये भले ही करे पाड़ी दे, भगवान तो पति धर्म निभा रहे, गिरने नहीं दिया। तब रुक्मणी को दिल में बहुत दुख लगा, प्राण से प्रिय ऐसे प्रियतम जब ऐसा बोले कि किसी और को, एक एक सती पति प्रिया नारी के लिए इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है। तब सुखदेव जी कहते, लिखन्ति भूवि, अपने पैरों से नीचे नजरे करके भूवि पर लिखने लगी, मतलब उसमें कुछ कुछ खरोच देने लगी। हमारी देवहूति माता के विषय में भागवत जी में वर्णन है, 3:20-23:25 कुछ होगा, देख लीजिएगा। जब कर्दम मुनि चले जाने लगे, नव कन्या का जन्म हो गया, बोले देवी तुम्हारे पिता को बोला था कि एक भी संतान होगी मैं चला जाऊंगा, अब तो नव हो गई, मैं जा रहा हूं। अब देवहूति माता बड़ी दुखी हुई है, पति देव आप जा रहे हो, नव नव कन्या है, इनके लिए दूल्हा ढूंढना क्या क्या, एक अकेली नारी दुख लगता है ना, पति जो प्रेम करती हो इस तरह चले जाए तो वो भी दुख में। सुखदेव जी कहते, लिखन्ति भूवि, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि भागवत जी में कहां कहां आया है। और आज एक विशेष भारतवर्ष की आर्य नारी जगत जननी माँ जानकी को याद करना चाहता हूं, इस तापी के तट पर आप भक्त समुदाय में, जो राधा रानी का ही अंशकाय व्यू है, रुक्मणी की बात कहे या लक्ष्मी की या फिर सीता की। सीता जी जब रामचंद्र जी वन में जा रहे थे और उसने कहा कि आपको नहीं आना है, आपको यहाँ रहना है, हमें पिताजी ने कहा है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आर्य वचसा यदगाद अरण्यम, मैं वन में जाऊंगा। तब सीता जी क्या करती है, दुख में विरह में अयोध्या की चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्रवधू और पूरे दुनिया के साधु समाज जिन्हें राजर्षि कहते हैं और जिनका नाम द्वादश महाभागवत जनों में है, भगवत गीता में कर्मणे सिंसिद्धि आस्थित जनकादय, और उस जनक की जानकी पैरों से अयोध्या की भूमि को खरोच देने लगी, लिखने लगी। गोस्वामी ने बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है, चारु चरण नख लेखति धरनी, ट्राई करिए गाने का, चारु चरण नख लेखति धरनी। चारु मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, संस्कृत में सुंदर को क्या कहते हैं, चारु, चारु चरण, सीता जी के चरण एकदम लाल गुलाबी, कमल से भी कोमल, कमल की पंखड़ियां भी शर्मा जाए कि इतनी कोमलता, इतनी सुंदरता और इतनी सुगंध हमारे पास नहीं है। हमारे सीता मैया के चरणों से स्माइल स्मेल निकलता था, फ्रेग्रेंस सुगंध निकलता था। और नख कैसे थे, जैसे कमल की पंखड़ियों पर कोई बिंदु मोती पड़ा हो, ऐसे सीता के कमल लाल चरण पर वो सफेद नख ऐसा लग रहा था जैसे कमल पर पानी का कोई बिंदु मोती पड़ा हो, इतने चारु चरण। वटिया नोता पड़ी गया, नखमा मेल नो तो बराई गयो, सीता के चरण गाइए, चारु चरण नख लेखति धरनी, चारु चरण लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। देखिए चारु चरण नख लेखती धरनी। एक बड़ी प्यारी बात, सीता जी ने नूपुर पहना था, रघुकुल की महारानी है भाई, बड़े सुंदर पायल झांझर पहने थे, नूपुर कहते ना, नूपुर मुखर। देखिए रामायण की कथा, नूपुर चुप हो गए। देखिए किसी नारी ने अगर पैरों में नूपुर पहने हैं जिसमें ट्विंकल बेल्ट हो, मतलब रुमझुम आवाज आती हो, घुघरी हो, और वो जब वो नारी अपने पैरों को हिलाती है तो नूपुर बजेंगे कि नहीं बताओ? बजेंगे। लेकिन यहां पर एक अलौकिक घटना बन गई कि सीता जी अपने चरणों से, राम जी जा रहे मेरे को ले जाने रहे, खुद वन में जा रहे, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे, इसलिए हृदय दुखी है तो दुख में भूमि को कुछ लिख रही है, तो पैर हिला रही है, तो नूपुर हिलने चाहिए, हिलने चाहिए तो नूपुर में आवाज भी तो आनी चाहिए। लेकिन गोस्वामी लिखते हैं नूपुर मुखर, नूपुर चुप थे, एक भी घुघरी से एक भी बेल नहीं बजा। मंदिर में घंटी हो पण क्यारे वगाड़ाए क्यारे न वगाड़ाए इनी भान होवी जोईए। शंखा बाजे घंटा बाजे पण आरती ए बाजे, शयन आरती शांति थी होय। भगवान ने एम थाय मार हु एम थाय आ रुआ तो हूं घुटाड़ दी थी, वो भगत है वो। कौन सी आरती किस राग में कैसे गानी चाहिए, ये भी एक एक सिद्ध एक कला है। हरे राग भी क्या है। ओके, भावग्राही भगवान तो भाव जो है, तुम्हें चिंता नहीं करता, भाव हो तो बधु हाल से, पण भाव होय एने भान पण राखवी जोए, ये भी एक बात है ना। नूपुर चुप हो गए, हम उस पर बोल रहे हैं सीता जी के, क्यों? जो नूपुर मधुर है ना, सुंदर है, रघुकुल ना घरेणा का ही सोनी हारा जो है नहीं तो पछी हचू होनू हो तू। ये कथा सुनने वाला भी, हम लोग को सुवर्ण इकट्ठा नहीं करना है, हमें खुद सुवर्ण बनना है, भगत साचू सोनू हो जो है। ये कथा हमें सुवर्ण बनाती है, क्योंकि ये सुवर्ण सोना गहना गोल्ड जो आप पहन रहे हो ना, शरीर को सुंदर बनाएंगे, लेकिन ये शरीर तो एक दिन राख होने वाला है। लेकिन ये जो वैष्णवता के आभूषण सुवर्णता जीवन में आ गई ना, तो गोलोक के गेट खुल जाएंगे भैया, वैकुंठ ना दरवाजा उखड़ी जाएगा। सुवर्ण पहनना नहीं है ना, उसके पीछे भागना है, हमें खुद सुवर्ण बनना है ताकि भगवान हमें अपने शरीर पर धारण करे। भाग्य उस सोनी के, भाग्य उस गोल्ड के, कि सीता के चरणों में नूपुर बन के बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं राम और सीता के चरणों के नूपुर बनने के लिए, ये भी भाव आया है। अरे भगवान कृष्ण जहां पैर देते हैं ना, वहां पत्थर बनने को तरसते हैं भारत के ऋषि, ये हमारा वेद कहता है, ये रामायण गीता भागवत है, जिसको हमारे नरसिंह मेहता अंतर की आंख कहते हैं। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आंखों, जो वास्तव में आंखों नहीं पांखों है, भगवत धाम उड़ा जाके ले जाएगी आपको। हरी ये दीदी छे मने उड़वानी पांखों, पण आपणे हलबाबानी लीधी छे, गुजरात समाचार सौराष्ट्र समाचार, अब इनी वात होय एमां उतरी गेली मरी गेला ने भटकाणा आटला खटेरा भटकाणा ओला पण आम कोक लई गयो। कभी आया पेपर में गोलोक से भगवान उतरे ये भगत धाम गया? वो तो क्या रहा है, ये तो गीता भागवत में है ये बातें, इसको सुनना है समझना है। नूपुर मुखर मधुर कविवरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवर। चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में व्रज भाव में जमीन से नख को, जमीन नख से जमीन को लिख रहे हैं, खुरेद रहे हैं, हम याद कर रहे, देवहूति कर रही थी ऐसा, रुक्मणी कर रही थी ऐसा, राधा रानी गोपिया ऐसा कर रही थी ब्रज में। अब हम रामायण की द्वार पर खड़े हैं, जहां सीता मैया अयोध्या में पैरों से नख से जमीन खुरेद रही है, मानो कुछ लिख रही है। तो हमारे भाव जगत के रामायण के संत बड़ी प्यारी व्याख्या करते हैं कि सीता जी ऐसा क्यों कर रही है, मानो कह रही है, पूरे नारी जगत को संदेश दे रही है कि जो स्त्री अपने पति का साथ नहीं देती उसको धरती भी साथ नहीं देती। इसलिए माता धरती की पुत्री है सीता, तो अपने मां को पत्र लिख रही कि हे मां धरती, मारो नाथ मारो धनी मने हारे नथी लई जातो, तू के एने के मारू मंगल एना चरणों मां छे। कारण के सासु वड्डी है कि मधर इन लो कानूनी मां है। मधर इन लो मतलब कानून, कानून के अनुसार मधर है, तो कानून से वो बोल सकती है। तो मानो सीता अपनी मां धरती को कह रही है कि मैया मेरा मंगल तो राम के चरणों में है और वो मेरी सुन नहीं रहे हैं, वो मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं, आप कुछ मदद करो। और जो पत्नी अपने पति का साथ नहीं देती उसको मां धरती, मुझे पता है कि आप भी माफ नहीं करती। मानो लेटर लिख रही है अपनी मां को। अच्छा भैया ये बताओ नूपुर क्यों चुप हो गए? संतो तो सब पूछते। तो नूपुर इसलिए चुप हो गए कि जिसके चरणों का हम आश्रय लिए है ये हमारी मां जानकी दुख में है, और जब कोई वैष्णव दुख में हो तो नाचना चाहिए, पर दुखे माथे पड़े के उपकार करे। हाँ, हमारी मैया जानकी सीता दुख में है, इसलिए एक एक झांझर एक पायल की घुघरी दूसरी को कह रही है बजना नहीं शोक, क्योंकि मैया का मन अभी सुख नहीं है और हम जिसके साथ जिसके चरणों में है उसके दुख में हमें साथ देना है। इसलिए कोई नूपुर कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि सीता जी दुखी है तो उसमें संगीत बजे अच्छा नहीं ना भैया। लेकिन मानो चुप रहकर मां सीता को एक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जानकी मैया, हमें विश्वास है आपका प्रेम सच्चा है, आप तो जाओगी राम के साथ, क्योंकि ऐसा जिसका भाव हो उसको भगवान छोड़ सकते नहीं। लेकिन हम इसके लिए चुप है कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें भी साथ में ले जाना, क्योंकि राम जी ने वनवासी का वेश लिया है तो सारा गहना सिंगार उतार देंगे, और आप पतिव्रता नारी हो उनका साथ दोगी तो हमें विश्वास है कि आप भी सारे आभूषण गहने उतार दोगी, तो आपको तो सौभाग्य मिलेगा राम के चरणों के साथ जाने का। लेकिन जिसने राम के चरणों के पीछे चला है ऐसे साधु के चरण संग से हम छूट जाएंगे तो हमारा तो दुर्भाग्य हो जाएगा, तो हम आपको विश्वास दिलाते कि हम आपका साथ देंगे। और इसलिए देखो चुप है, आप दुखी है तो हम भी दुखी है, और हम चुप रहकर एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें तमारा छे तमारु की दू करसु हमने जोड़े राखो जोड़े रे जो साथे ले जा। क्योंकि सीता जी मूड में थी गहने उतारने के, तापस वेश विशेष उदासी ना, और बात सही हो गई। वाल्मीकि ने कमाल का श्लोक लिख दिया इस पर, इस लीला पर वाल्मीकि ने एक बढ़िया बात लिख दी। नूपुर ने कहा था कि सीता जी अगर आप हमें साथ ले जाओगी और कहीं पति से विरह हो गया तो हमें काम मां आवशो ने आईवा माथे पड़ा काम मां आईवा। शू काम मां आईवा, क्या काम में आए? अरे जब जटायु के साथ लड़ाई रावण कर रहा था, सीता जी ने अपने गहने पोटली में बांधकर नूपुर निकाला, कुंडन निकाला, गहने निकालकर पोटली में डाल के नीचे डाला, और एक वानर को मिला जो सुग्रीव का वानर था, और वो सारे गहने लेकर सुग्रीव को दिया। सुरती नो तो ये तो घरे उपड़ी गयो, तुम्हारे मंदिर नो मेल पड़ी गयो, पण राजकोष में जमा करावा के मने मिलू छे, मेरे को मिला है। और सुग्रीव के साथ जब हनुमान जी ने राम जी की मित्रता कराई तब सुग्रीव ने वानर को बुलाया, बोला पोटली लाओ, और राम को दिखाया, बोले एक वानर को मिला था, आप देखिए तो जरा ये गहने कहीं आपके तो नहीं है, सीता मैया के तो नहीं है। राम जी नूपुर देख रहे, आंखों से अश्रु बह रहा है, कुंडल देख रहे, बाजूबंद ब्रेसलेट सब था, कंगन सब जो सीता जी ने डाला था नीचे। और जब अब क्यों उतारा उसका भी भाव है, राम साथ में थे तब तक तो सिंगार गहना था, लेकिन मेरा पति ही नहीं है तो किस काम के, इसलिए सीता जी को आभूषण भी, क्योंकि मेरा आभूषण तो राम है, और वो राम फिर कौन देगा? प्रभु मुद्रिका वो हनुमान जी जाकर देंगे ये वीटी, हेलो आज थी चालू करो आ रिंग पेरो, बाकी बदा घरेणा आपने पछी लावशु चढ़ावशु पासा। ये सब रामायण है, तुम्हारी भाषा में कहू छू, कारण के बात अंदर तो जानी चाहिए ना, जिस भाषा में जिस भाव से जाए। जैसे बच्चे को दवा किसी भी रूप में पिलाओ, अंदर जाए तो गण करे, घुट के पिलाओ चाहे ऐसे पिला दो। राम जी को भाव प्रेम में विरह में लक्ष्मण से पूछ रहे, लक्ष्मण देखो तो ये ब्रेसलेट ये कंगन तेरी भाभी का है ना, सीता का है ना। अब लक्ष्मण भी कमाल है, लक्ष्मण जी कह रहे मेरे को नहीं पता, अरे तू रघुवंशी है, मेरा भाई है, रघुकुल के गहने नहीं पहचानता क्या। लक्ष्मण जी नीचे मुंह करके बैठे, लक्ष्मण तेरे से बात कर रहा हूं मैं, ये देख तो ये कंगन तेरी भाभी सीता के है कि नहीं, ये केयूर ये कुंडल तो उसके है। वाल्मीकि ने श्लोक लिखा, लक्ष्मण जी बोले केयूरम ना भी जानाती ना जानाति कुंडलम, कुंडल का मुझे पता नहीं, केयूर का भी मुझे पता नहीं, लेकिन जब नूपुर हाथ में आया ना सीता जी का, लक्ष्मण जी ने बोला भैया ये लाओ तो, नूपुर हाथ में लेके बोला यस ये मेरी माँ सीता के है। भाभी नहीं बोला, क्या बोला, ये मेरी माँ सीता के है। राम जी ने ये नहीं पूछा था तेरी माँ सीता के, उसने क्या पूछा था, सीता के तेरी भाभी के है ना भैया, लेकिन लखन लाल कह रहे कि मेरी माँ के थे। क्यों, तो वो कारण देते हैं, केयूरम ना जानाती कुंडले, नूपुरम परिचिनामी नित्य पादाभिवंदनम, क्योंकि मैं रोज मेरी माँ सीता के चरणों में प्रणाम करता था तो एक ही गहना देखता था, कौन सा, नूपुर, बाकी ऊपर तो कभी हमने नजर ही नहीं किया कि क्या सीता पहनती क्या। धन्य है ऐसा भाई ऐसा देवर, ये हमारा भारतवर्ष, ये है रामायण, नहीं जानता हूं। और वो नूपुर मानो लक्ष्मण के लाल के हाथ में आकर हंस हंस के कह रहे भैया तेरे लिए तो हम रुके थे, क्योंकि हम जिस चरणों में थे ना उस सीता को हमने उस समय अयोध्या में बोला था, काम्मा अवशु साथे रेशु। अब देखिए ये गहने भी अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि गहने बनो, क्या बनो, आभूषण। ये वैष्णव जो है ना ये वसुंधरा का असली आभूषण है, ये वैष्णव जो है वो इस पृथ्वी का असली रत्न है, और ये वैष्णव बनने का मौका अवसर श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। ऐसा बनो कि सीता या राम या लखन के हाथ में या चरणों में पहुंच जाए, जिसकी ऐसी भावना होगी ना वो पाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में नक्शे लिख रहे हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा रामायण का थोड़ा सा भागवत जी का एक झलक दिया कि ये है सार, अणुश्च महदभ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशल नर सर्वतम सारमदधात पुष्पेभ्य इव षट्पद, भागवत 11, 8, 10 दत्तात्रेय। 24 गुरुओं में एक गुरु मधुमक्खी को करते हैं, मधुमक्खी देखे है ना सब, सारे पुष्पों में मध चुनती है वो, हनी। दो टाइप की मक्खी आप सबको पता है, एक जो आपके घर में होती है, मैं दो पैर वाले की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग तो सोचने लग गए, चार मक्खी की बात, ओरिजिनल मक्खी की बात कर रहा हूं। उस मक्खी का क्या तकलीफ है आप सब जानते हैं, वो रसगुल्ले में भी बैठती है, फिर आप ओके बाय प्रोडक्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ श्रोता मक्खी श्रोता है, गंगा गए गंगा दस जमुना गए बदे बेह जाए अपने हाँ भड़वानो का, ये मक्खी उसको कोई उसको पता नहीं, वो अच्छी जगह भी बैठती है बुरी जगह भी। ऐसे ही हम लोग भी है ना, कीर्तन में भी नाचते क्लब में भी नाचते कथा में भी जाते टोकीज में भी जाते, ये भी खाते ये भी मक्खी। लेकिन एक ऐसी मक्खी भागवत जी में जिसको दत्तात्रेय ने गुरु बनाया, क्या बनाया, पुष्पेभ्य इव षट्पद, वो भंवरा वो मधुमक्खी का एक ऐसा स्वभाव है कि वो केवल पुष्प पर बैठती है, गंदगी पर बैठेगी नहीं। और एक बात तो हमने टीका में इतनी मधुर पड़ी भैया कि वो मधुमक्खी पुष्पों में भी उस पुष्प पर बैठती है जिस पुष्प में सुगंध हो, पराग हो, जिस पुष्प में रस नहीं उस पे भी नहीं बैठती। बताओ, ऐसा नहीं कि सब पुष्प पर बैठेगी। पुष्पों में भी कुछ पुष्प होते हैं ना जो केवल नाम के होते हैं, जिसमें केवल पुष्प आकार और रंग होता है लेकिन सुगंध पराग नहीं होता। जैसे जासवंती का फूल जो गणेश जी को चढ़ता है, कोई सुगंध नहीं होता उसमें। और आजकल तो कलयुग में सभी फूल ऐसे ही है, सुगंध है ही नहीं, क्या करें प्राय। लेकिन पुष्पों में ही अत्तर बनता है, उसके ही रस होते हैं। लेकिन पुष्प व्यव षटपद, षटपद जिसको जिसको भंवरा कहते हैं, वे तो उसी कमल पर बैठता है, उसी गुलाब पर बैठता है जिसमें रस हो, जिसमें मधु हो। और फिर दूसरा कमाल क्या है उस पुष्प, उस मक्खी का, कि वो पुष्प का रस सार चूसता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पुष्प की पंखड़ी को कोई भी क्षति कष्ट नहीं पहुंचाता। सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पुष्प काट देगा, पुष्प को मुरझा देगा या पुष्प को तोड़ देगा, नहीं, पुष्प एज इट इज रहेगा लेकिन उसका सार चूस लेगा। ये है वैष्णव। इस कलयुग में ही रहेंगे, समाज में ही रहेंगे, संसार में ही रहेंगे, लेकिन इसका सार है कृष्ण कीर्तन, हरि भक्ति, वैष्णवता। ले लेंगे फिर भी समाज में आइडियल, आदर्श ही रहेंगे। ये सीखना है हमें भागवत से। दत्तात्रेय भगवान ने भंवरे को गुरु बनाया कि ये सार ग्रहण करता है। ऐसे ही बहुत शास्त्र है, बहुत सदगुरु है, बहुत संत है, बहुत सत्संग है, लेकिन सब जगह मत्था नहीं हिलाना भैया, उसमें से सार लेना। शास्त्रेभ्य कुशल नर, शास्त्र बहुत है, वेद अनंत है। इसलिए तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समृद्धितय। हे सुत जी, सारे वेद पुराण इतिहासों का सार सार हमें सुनाइए। और हम यहाँ चैतन्य चरितामृत सुनने बैठे आए हैं, तो चैतन्य चरितामृत तो भागवत का भी सार है भैया। अवतार सार गोरा अवतार, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलित अवतार। अवतार तो बहुत है, कृष्ण तो स्वयं अवतार ही सर्वेश्वर है, लेकिन उसका भी सार ये चैतन्य अवतार है जो प्रेम प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आया है। हजार शास्त्र पढ़ लो, हजार बातें, हजार ग्रंथ, लेकिन सच्चे प्रेमी सदगुरु के पास एक घंटा सत्संग उस हजार गुना पढ़ने से भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए कभी सत्संग सत्प्रेमी से चूकना नहीं आप लोग। ये दास का निवेदन अनुभव के साथ बोलाया बताया जा रहा है। और एक दृष्टांत हम एक संत से सुन रहे थे। एक बार एक भगत वैकुंठ चला गया और भगवान को कहा, विष्णु भगवान आपके पास 64 कला है, 16 कला है, बहुत कला है, लेकिन आपकी कृपा से मेरे पास एक कला है। भगवान ने कहा, अच्छा भैया क्या कला है तेरे पास? बोले, मैं चित्र बनाता हूँ। बोले, चित्र तो बहुत बनाते हैं सूरत में, बम्बई में, पृथ्वी पर। बोले, नहीं नहीं मेरे पास एक आपकी कृपा से एक्स्ट्रा कला है। क्या कला है? विष्णु के साला हमसे भी बात कर रहा है, हमसे भी बढ़कर कला बता रहा है। क्या कला है? कला आर्ट, समझ रहे ना आप लोग? क्या कला है? बोले, दूसरे चित्रकार सामने देखे हुए व्यक्ति को तुरंत पेंट कर देंगे, लेकिन मेरी कला ऐसी कि मैं एक बार 2 मिनट किसी को बढ़िया से देख लूं, फिर वो व्यक्ति चला जाए, फिर भी मैं उसका एज इट इज चित्र बना सकता हूं। ये मेरी एक्स्ट्रा कला है। अच्छा, भगवान ने कहा, जरा दिखा दो, किसका बनाओ? बोले, हमारा ही बनाओ। भगवान का खुद, भगवान को बोला, 1 मिनट खड़े रहो। देखा नख से लेकर शिखा तक, 2 मिनट देके भगवान को कहा, ठीक है मुझे अलग कमरा दे दो, कोई बात नहीं, मैं अलग बना दूंगा। और जैसे ही एज इट इज बनाया, ये तो योगेश्वर थे, बोले, भगवान बाहर आओ। बाहर आए तो रूप बदल के आए, कभी राम बन के, कभी बोले एज इट इज, बोले अलग है। भगवान ने कहा, अलग है? एक चीटिंग। बोले, तूने बोला था कि एक बार मुझे देख ले और सेम बनाएगा। सेम नहीं है, मैं भगवान हूं कि नहीं? भगवान तो हो, तो फिर बताओ सेम। बोले, ठीक है देख लिया। अभी जय राम बनाया था वो रूप बनाया, तो भगवान वामन, चेंज करते जा रहे। और ये इसका जो कला था वो पसीना निकल रहा है कि मैंने खोटो पाड़ से बोल रहा था कि जो बनाऊ एक बार में बना देगा तो एज इट इज मेल होना चाहिए। और हमारे पार्षद खड़े हैं और भी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, और सब डिसीजन देंगे, सब कहते नहीं अलग है। अरे आप लोग भी उसकी टीम में हो क्या? बोले, एनु खावानु भाई, हमारे तू धारा काला है वो पंदी भी हो जाए, हमारे रहवानु। क्या करे, अब ये थक गया, 25-50-24 अवतार चिन्ह बना रहा है, भगवान रूप बदल रहे, जूठा हो रहा है, पसीना निकल गया, अब 25वां चिन्ह चित्र बना रहा है ना, भगवान को 2 मिनट देख के गया अलग। उसी समय नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि क्या है भैया, बोलो के परसे वो वड़ी जोश, ये माने मुंह लुसीना मने वड़ी जोश, पसीना निकल गया। नारद जी बोले क्या है समस्या बताई, प्रभु मैं कला का बात किया, विष्णु मेरे से ऐसा बोले ऐसा किए। नारद जी ने कहा ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा है, बोले हाँ, और तेरा पसीना भी नहीं निकलेगा। और नारद जी ने पता नहीं क्या आइडिया दिया, विष्णु भगवान आए ना, बोले आओ बताता हूं। और जैसे भगवान आए तो सामने सेम छवि था, भगवान देखकर हंसने लगे, बोले तेरे को कौन मिल गया यार गुरु। भगवान हंसने लगे, वो बोला क्यों है कि नहीं कला, पहले ये बता तेरे को मिला कौन। बोले नारद जी। हाँ तभी तो आप लोग भी जानना चाहते हो कि भाई नारद जी ने किया क्या। नारद जी ने कहा पेंसिल पेपर मत बिगाड़, ये काश ले आए, हा मैं राखे ने रूप बदलवा दे, इनु ईद आवशे, आपने नो बदला ई बदले, एम श्रोता एवा होय वक्ता बदले, एज इट इज आपने नो फेरेवी हो भाई, ई बदले होय तो बदले, ऊपर बे गेठे बे है, हम नहीं बदलेंगे। नहीं आप लोग तो अच्छे हो। लेकिन नारद जी ने कहा काच रख दिया, अब ये 6x6 का काच रख दिया था, भगवान इसलिए देखकर हंसने लगे कि ये आइडिया कौन दिया। तब भगवान ने कहा कि यही तो बात है, मैं मिल जाऊं या मेरी गीता या रामायण मेरे शास्त्र मिल जाए, लेकिन जो मुझे जानता समझता है ऐसा प्रेमी गुरु जब तक जीवन में ना आए ना, तब तक कोई कला काम में आने वाली नहीं है तेरी। इसीलिए संतों ने सिद्धांत बना दिया, कितना पढ़ लो सुन या रट लो, जब तक जीवन में कोई प्रेमी भक्त का संग न मिले उद्धार नहीं हो, भगवत को भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। ये कला तो वो सिखाएंगे हम, और इसीलिए हमें ये रामायण गीता भागवत से सुनना समझना है कि कैसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के मंदिर में देखते थे तो घर जाकर उसी का चिंतन उसी का स्मरण और उसी के साथ रोते रहते थे, मानो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रेम भक्ति सिखाने आए हैं। तो भक्ति उसे कहते हैं कि भगवान को याद करके उनकी छवि को, उनके मोर मुकुट को, उनकी बंसी को, उनकी टेढ़ी चितवन, उसकी टेढ़ी चरणारविंद को याद करके गाना रोना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। एवरीवन हरे 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 राम हरे राम। 2 मिनट प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए चार भक्तों के साथ सन्यास लेकर नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और रस्ते में क्या हुआ, जब चैतन्य महा दो मिनट की अंतिम लीला, चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो जिस चौथे अध्याय में चैतन्य चरितामृत का हम आश्रय ले रहे हैं और जिसमें विशेष माधवेंद्रपुरी के साथ महाप्रभु का मिलन, माधवेंद्रपुरी के साथ तो नहीं हुआ लेकिन महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के गुण गा रहे हैं और माधवेंद्रपुरी का भगवान के साथ जो संबंध था उसके विषय में सुंदर अध्याय की शुरुआत करते हुए कृष्णदास कविराज महानुभाव एक प्यारी बात लिख रहे हैं कि यही मत महाप्रभु चलीला नीला चले, इस तरह कीर्तन करते हुए नाचते हुए भक्तों के संग में चैतन्य महाप्रभु कहाँ जा रहे थे, नीला चल, अचल मतलब पर्वत, नीला मतलब स्काई ब्लू कलर जो आकाशी कलर का, नीलाद्री नीलाचल, उस नीलाचल धाम में जगन्नाथ का दर्शन करने और भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे थे। तो रस्ते में क्या होता था उस समय 125 वर्ष पहले कि गाड़ी तो किसी के पास नहीं थी, मोटर कार तो थी नहीं, बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी वो सब था, लेकिन उस समय कुछ टैक्स ऐसे आते थे गांव में कि व्यक्ति के भी पैसे लगते थे पार करना हो तो गांव, जैसे अभी व्यक्ति के तो नहीं लगते लेकिन बाहरी देश में लगते हैं, अपने अपने देश में नहीं लगते, लेकिन पहले गांव से गांव पार करना होता था तो भी क्या लगता था, व्यक्ति के भी चार्ज लगते थे, नदी आती थी बीच में तो नौका पार करने के भी चार्ज लगते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम रस कीर्तन सुन के जो चार्ज लेने वाले थे वो इतने प्रेम में मस्त हो जाते थे कि वो भी कहते थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम।
अरे भाई आप भगवान का नाम गा रहे हो सुन रहे हो, आपसे पैसा नहीं ले सकते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबसे बड़ा धन तो हम आपको दे रहे हैं भैया, हरि नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। और महाप्रभु के रूप को कीर्तन को देखकर सारे पाप जल जाते थे, सब प्रेमी बन जाते थे। किसी रस्ते में गांव आता था तो महाप्रभु कहते थे भक्तों को आप लोग चल के आए हो थक गए हो विश्राम करो, मैं गांव में जाता हूं, किसके लिए कुछ प्रसाद तो चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कोई भी गांव हो अंदर जाते थे, किसी से ज्यादा बहुत बात नहीं करते थे, दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे हरे
राम राम राम।
भिक्षा लगी एक दिन एक ग्राम में गया, किसी भी गांव में एक बार एक गांव में गए, आपने बहुत अन्न अनिल मांगिया और सब लोग झोली भर भर के देते थे कि हमारे सद्भाग्य है कि आप जैसे संकीर्तन प्रेमी भक्त हमारे गांव में आए, सब बहुत देते थे। और महाप्रभु सबका सीधा लेकर इन भक्तों को आकर कहते थे चलो बनाओ भोग लगाओ फिर महाप्रसादे गोविंदे। इस तरह कीर्तन प्रसाद संकीर्तन आनंद लेते हुए चलते चलते चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल नवदीप से कहां पहुंचने जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी। लेकिन रास्ते में एक गांव आया, कविराज महानुभाव कहते हैं उस गांव का नाम था रेमुणा, रेमुणा गांव की। हुआ क्या, आज भी आप जाओ ना कलकत्ता से पूरी ट्रेन में तो रास्ते में ओडिशा बॉर्डर में एक स्टेशन आता है बालेश्वर, स्टेशन का नाम क्या है बालेश्वर, से फिर गांव जो रेमुणा गांव बालेश्वर स्टेशन पे उतर के फिर टेम्पो करके 14-15 किलोमीटर जाना पड़ता है जो रेमुणा गांव है। और उस रेमुणा गांव का नाम है रेमुणा, रमन रेती जैसे ना रेमुणा। और उस गांव में एक मंदिर है श्री कृष्ण का, और उसका नाम है गोपीनाथ। रेमोनाते गोपीनाथ परम मोहन, एकदम सुंदर मूर्ति है भगवान श्री गोपीनाथ जी का। भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन, चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गए और दर्शन प्रणाम किए। लेकिन एक अलौकिक विलक्षण घटना घट गई कि गोपीनाथ को वो पुजारी ने पगड़ी पहनाया था और पगड़ी में कुछ छोटे छोटे पुष्पों का गुच्छा बना के उसमें मोर पीछ डाल के पगड़ी में लगाया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे ही प्रणाम किए, तार पद्म पाद निकट प्रणाम करीते, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही प्रणाम किया गोपीनाथ भगवान को रेमुणा गांव में, तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथा ते, और ये पुष्पों का जो चूड़ा था वो गिर के चैतन्य महाप्रभु के सर पे गिर गया। चैतन्य महाप्रभु तो सोए प्रणाम कर रहे थे, तो भगवान गोपीनाथ ने मानो अपना प्रसाद दिया, मानो गोपीनाथ समझ गए कि ये तो मेरी प्रिया आई है राधा, और तो देना चाहिए ना गिफ्ट। तो भगवान के सिर से वो चूड़ा मतलब वो पुष्पों का गुच्छा हार गिर के चैतन्य महाप्रभु के सर पर मस्तक पर गिरा। चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित हैया, चैतन्य महाप्रभु परम प्रसन्न हुए, खुश हो गए कि वाह भगवान गोपीनाथ ने हमें प्रसाद दिया। बड़ नित्य गित्य कैल भक्तगण संगे, और चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और भक्तों को सामने नाचने लगे गाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, आप भी खड़े हो जाए, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। दो मिनट संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु हाथ उठाकर नाच रहे थे तो गोपीनाथ के पंडा पुजारी सब बाहर आने देखने लगे, तो कुछ गांव के लोग भी आने लगे, सब आनंद में आश्चर्य में, यहां तक भगवान गोपीनाथ भी खड़े खड़े आश्चर्य में कि बाप रे, खुश हो गए कि आज तक हमारे मंदिर में बहुत लोग आए लेकिन ये कोई अलग है जो नाच रहा है गा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु के साथ में सभी लोग कीर्तन करने लगे, आप भी ऐसे भाव से कि हम दामोदर के चरणों में तापी मैया के सामने भक्तों के संग में है और चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ में है प्रभुपाद के साथ, उस भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब हुआ क्या, रात हो गई, चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तब 7:30-8 हो गया था और महाप्रभु ने दर्शन किया प्रणाम किया कीर्तन किया, कीर्तन करते करते मंदिर बंद करने का समय हो गया, 9:30 रात हो गई, फिर भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे
राम राम राम।
अब हुआ क्या, कीर्तन चल रहा है, समय हो गया, रात हो गई, कविराज महानुभाव कहते हैं, नाना रूपे प्रीति कैल प्रभुर सेवन, सब ब्राह्मण ने महाप्रभु का सेवा किया, दर्शन किया, प्रणाम किया, कीर्तन किया। सही रात्रि तहां प्रभु करिला वंचन, रात हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज की रात हम यहीं रुकेंगे मंदिर में, आप लोग नहीं, तो रुकना है तो ये हॉल खाली है, आज हम मंदिर में रुकेंगे। तो महाप्रभु को भक्तों ने पूछा क्यों हम मंदिर में रुके, क्यों रुके मंदिर में, बोले एक बात याद आ गई हमारे गुरु की, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस मंदिर में इस गोपीनाथ के विषय में हमारे गुरु जी ने कथा सुनाई थी और वो कथा के अंतर्गत एक बात याद आ गई। बोले कौन सी बात? भगत लोग पूछे कौन सी बात? बोले ये प्रभु जी जो है ना गोपीनाथ, उसका प्रसाद खीर प्रसाद बड़ा अच्छा मिलता है और वो खीर प्रसाद आज नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, कल निर्जला एकादशी है, परसों मिलेगा। तो खीर प्रसाद और मुझे वो प्रसाद खाके ही जाना, पक्के भगत है आप सब भी। हम भी मंदिर आते एक प्लान तो जरूर करते, कथा सुने कि न सुने प्रसाद लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम।
एक बार सभी हाथ उठाकर साथ में,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस तरह अपने गुरु ईश्वरपुरी का याद किया और गोपीनाथ के खीर का याद किया। आप सभी भी याद ही करिएगा, खाना नहीं है, कल कुछ नहीं मिलेगा, परसों ही है, लेकिन याद कर रहे हैं। तो इस बात को बोल के मैं विराम देता हूं। महाप्रसाद शीर लोभे रहिला प्रभु तथा, महाप्रसाद खीर के लोभ में चैतन्य महाप्रभु मंदिर में रुक गए। पूर्वे ईश्वर पुरी तर कहिया छे न कथा, और उसके गुरु ईश्वरपुरी ने जो कथा बताई थी वो याद आ गई। तो सभी भक्तों ने पूछा, हे चैतन्य महाप्रभु, आपके गुरु ईश्वरपुरी ने जो आपको कथा बताई है, कृपा करके हम सोएंगे नहीं, आप बताइए। हम नहीं बताएंगे, आप सोएंगे, कल बताएंगे, लेकिन यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु सोए नहीं, कथा बता रहे, लेकिन उस कथा को हम कल सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से उन भक्तों को खीर चोर गोपीनाथ की कथा जो अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुनी थी वो सुनाएंगे। और उसी कथा को हम कल से 8:45 भीम एकादशी है रात को, इस कथा को सुनेंगे। और इस श्रोता कौन है जानते? वक्ता तो चैतन्य महाप्रभु, श्रोता सब भक्त है, लेकिन उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त और स्वयं भगवान भी है, श्री नित्यानंद प्रभु श्रोता है। श्री निताई चांद की से संबंधे नाही जार, वृथा जन्म गेल तार, असत्य र सत्य करी मानी। ये भजन लिखा नित्यानंद प्रभु, निताई पद कमल उसमें लिखा गया। तो नित्यानंद प्रभु सुन रहे, और भी भक्त सुन रहे और चैतन्य महाप्रभु कथा बता रहे। इसी कथा को कविराज महानुभाव कहेंगे, जिसका अनुवाद कुछ कुछ तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। और इसमें वो लिख रहे हैं कि आज भी रेमुणा आप कभी जा सकते हो, खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है और वहाँ पर रसिकानंद प्रभु जो हमारे श्यामानंद प्रभु की परंपरा में शिष्य हो गए रसिक मुरारी, उनकी समाधि भी है और बड़ा सुंदर विग्रह है। और आज भी वो अमृत के लिए, उस खीर का नाम क्या है? अमृत के लिए। और वो स्वीट राइस बड़ा टेस्टी बनता है और वो प्रसाद आज भी वहाँ बनता है, भक्त लोग पाते हैं, बड़ा मधुर, ऐसा प्रसाद तीनों लोक में कहीं नहीं है, ऐसा महाप्रभु ने बोला है। और उस प्रसाद के लोभ में भगवान चैतन्य रुक गए और कथा सुनाने लगे। धन्यवाद, आप लोग प्रेम से पधारे, धैर्य से बैठे और दास को जो भी याद आया, रामायण गीता भागवत, आप सब भक्तों के सामने अपनी शुद्धि और आपके आशीर्वाद के लिए हमने गाया। कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी चैतन्य कथा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और कल निर्जल पांडव एकादशी है, प्रयास करिए मंगल आरती में आने का और निर्जला व्रत करने का, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप करने का, ताकि एकादशी के दिन हम कृष्ण कृपा को प्राप्त कर सके। श्रील प्रभुपाद की।
कृष्णा 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 हरे हरे।